हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो भक्ति रसामृत सिंधु के 7 अध्यायों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं और आज 8वें के आगे चर्चा होगी। 8वां अध्याय वैसे हमने आपसे कहा था कि आपको पढ़ना चाहिए और आशा है आपने पढ़ा होगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें दी हुई हैं, कई नियम दिए हुए हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अपराध क्या हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे नियम हैं, गांजा नहीं पीना चाहिए, अफीम नहीं खानी चाहिए, ये सब लिखा है। उस अफीम या नशीली वस्तुएं नहीं लगानी चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग अच्छी तरह उसको अगर पढ़ेंगे तो कई चीजें आप घर में शायद कर रहे होंगे तो उसको बंद कर सकते हैं। जैसे वर्णन है कि भगवान के सामने क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी को डांटना नहीं चाहिए, रोना या चिल्लाना नहीं चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपने सब पढ़ा होगा। हम इस अध्याय पर हमने कहा था चर्चा नहीं करेंगे इस पे और 9वें अध्याय पर। आप में से किसी को इनमें से कोई चर्चा है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर 10वें अध्याय की चर्चा प्रारंभ करें। अगर आप लोगों ने पढ़ा है 8 और 9, कोई आपको संशय कुछ पूछना चाहते हैं। ओके, जय श्री राधा जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, करुण नाम
हरे कृष्ण।
प्रभु जी। इसमें है लाल और नीले वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए।
हाँ, आपने लाल पहना हुआ है ना इस समय,
तभी डर लग
क्या
रहा था।
पूछ। हाँ, साधारणता ये नियम ये है कि बहुत भड़कीले वस्त्र पहनकर मंदिर में नहीं आना चाहिए, और वैसे भी लाल रंग या नीला रंग जनरली देखा जाता है कि ये जब 3 गुणों की चर्चा होती है, रजोगुण तमोगुण और सत्व गुण, तो आपको पता है कौन कौन से कलर कौन कौन से गुण के हैं। सत्व गुण का रंग कौन सा है, रजोगुण का कौन सा है, तो इसको भी ढूंढ लीजिए तो इससे भी कुछ उत्तर मिल जाते हैं। लेकिन प्रमुखता यहाँ ये कहने का अर्थ है, जैसे इसमें पूरा लिखा लाल नीले या बिना धुले वस्त्र पहनकर नहीं आने चाहिए, तो बहुत भड़कीले वस्त्र ना पहने, और जिससे कि जैसे लाल रंग बड़ा भड़कीला रंग होता है, अफकोर्स उसमें थोड़ी सोबर शेड भी होती है, पर जनरली लाल और नीला उद्देश्य यह है कि बहुत भड़कीले बहुत आकर्षित करने वाले वस्त्रों को ना पहने, जिसके द्वारा कृष्ण की ओर आकर्षण कम होकर किसी और की ओर आकर्षण ना हो।
और प्रभु जी, गणेश जी की पूजा के बारे में भी लिखा हो, गणेश
किसकी?
जी की पूजा करनी चाहिए।
गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। आप लोग करते हैं कि नहीं सब? यस, गणेश जी की पूजा इसलिए करनी चाहिए, नियम ये है कि गणेश जी को जब आशीर्वाद मिला था तो ये आशीर्वाद मिला था कि सबसे पहले उनकी पूजा होगी और फिर उसके बाद अन्य किसी की। लेकिन कृष्ण की पूजा में ये आवश्यक नहीं है। गणेश जी की पूजा यहाँ जब कहा गया है तो भगवान की भक्ति में जो विघ्न आ रहे हैं उनको हटाने के लिए है। तो जैसे श्रील प्रभुपाद ने अपने एक शिष्य को गणेश जी की पूजा करने की अनुमति दी थी, क्योंकि वो बहुत अच्छा फंड कलेक्ट कर रहे थे और वो कह रहे थे कि कभी कभी बाधा आती है, तो प्रभुपाद ने कहा अच्छा ठीक है करते रहो। उन्होंने पूछा था, उनकी देखा देखी और एक भक्त ने भी जाकर प्रभुपाद से पूछा कि क्या हम भी गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा रोज $10,000 ला कर दो तो कुछ कर सकते हो। तो कहने का अर्थ ये है कि कभी कभी किन्हीं चीजों को किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, तो भक्ति में जो विघ्न आते हैं उनको हटाने के लिए। दूसरी बात गणेश जी एक वैकुंठ मूर्ति भी हैं, अर्थात एक गणेश जो हम देवता के रूप में यहाँ देखते हैं और दूसरे एक गणेश वैकुंठ मूर्ति भी है। वैकुंठ मूर्ति मतलब वे वैकुंठ लोक में हैं उस रूप में, तो उनकी पूजा करने में कोई गलती नहीं है। लेकिन हम इस समय में अपनी संस्था में प्रभुपाद के आदेश का पालन करते हुए उसको नहीं करते हैं, उसका कारण हमने उस दिन भी बताया था कि कहीं एक गलत उदाहरण प्रस्तुत ना हो, लोगों की श्रद्धा भगवान में या भगवान के नाम में कम ना हो जाए, और जिस पथ को जिस प्रचार को हम कर रहे हैं वो प्रचार गलत ना हो जाए। तो इसीलिए ये नियम है, लेकिन हम लोग उसको ज्यादा पालन नहीं करते। ठीक है,
थैंक यू।
कलावती माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, संगतना।
हरे कृष्णा।
नियम दिए गए हैं वराह पुराण में, उसमें 24वां नियम है कि अच्छा पिछले कि नमक पान नहीं खाना चाहिए, तो क्या हम लोग जनरली पान का भोग लगा के खा सकते हैं?
हमारे इसमें नहीं करते, लेकिन कई संप्रदायों में खाया जाता है। जैसे आप नाथ द्वारा जाएंगे तो नाथ द्वारा में दिन में भगवान को 3000 पान भोग लगते हैं, और वहां तो ठाकुर जी हैं तो लोग उनको प्रसाद के रूप में लेते हैं, लेकिन हमारे संप्रदाय में हमारे आचार्यों ने इसको नहीं कहा है। भगवान को भोग लग सकता है और हमारे कुछ मंदिरों में भगवान को कभी कभी लगाया भी जाता है, लेकिन वो भक्त स्वीकार नहीं करते हैं। उसका कारण ये है कि ये किन के लिए लिखा गया है? अगर जो लोग बहुत अच्छी तरह भगवान की सेवा में लगे हैं, अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग इस कारण से पान वान खाने में बहुत ज्यादा कुछ और खाना लग जाते हैं, तो इसलिए जनरली पान सुपारी भगवान को अर्पण होती है, भक्त ग्रहण नहीं।
और दूसरा इसमें लिखा है कि आसन का जो महत्व बताया गया हर जगह कि आसन पर बैठकर, आसन पर खड़े होकर आरती करना चाहिए, तो आसन का क्या औचित्य क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है?
आसन का एक आसन का सिग्निफिकेंस होता है महत्व। जैसे कभी किसी को आप बैठते तो आप बैठने के लिए आसन देते हो, मतलब उसको थोड़ा सा आप अन्यों से महत्व दे रहे हो। तो जब हम आरती करते हैं तो उस पुजारी, जो पुजारी होता है वो सारे लोग जो उपस्थित हैं उनका प्रतिनिधि होता है भगवान को आरती अर्पण करने के लिए। तो जितने भी लोग वहां पर उपस्थित हैं उनकी तरफ से वो आरती कर रहा है, इसीलिए उसको थोड़ा सा आसन पर रहना चाहिए, पहला कारण है। दूसरा कारण है कि पृथ्वी से स्पर्श होने से जनरली चीजें दूषित मानी जाती हैं। जैसे अगर कोई आपका फूल पृथ्वी पर गिर जाता है तो आप उसको उठाकर फिर धोना पड़ता है या फिर उसको भगवान के लिए इस्तेमाल नहीं करते, तो इस दृष्टि से भी एक आसन रखने से उस चीज को भी बचाया जा सकता है। ठीक है,
थैंक यू, वेरी नाइस।
राधा चरण प्रभु।
प्रभु जी जन्म प्रणाम। प्रभु जी इसमें ये जो आपने बताया कि गणेश जी की पूजा जो के बारे में, तो उसमें क्या हमें ऐसा भी समझना चाहिए कि अभी हम लोगों का जो स्तर है साधना भक्ति जो हम करते हैं, और यदि हम किसी देवता के पूजा करना तो एक बात है, बल्कि देवता के मंदिर में या उनकी प्रतिमा के आगे भी हम खड़े होते हैं तो हमारे मन में स्वाभाविक रूप से कुछ न कुछ भौतिक कामनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो कि अपने वैष्णव आचार्यों के सामने हमारे अंदर शुद्ध भक्ति की ही कामना होती है। क्या ऐसे भी कारण समझना चाहिए कि देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है हमको, या उनके सम्मुख आने की आवश्यकता नहीं है?
निश्चित, जैसे हमने कहा था कि श्रद्धा हमारी कमजोर हो जाती है, और ये भी एक कारण है कि श्रद्धा कमजोर होने से भौतिक इच्छाएं या फिर उनके ऊपर आश्रित ज्यादा हो जाते हैं लोग। स्वाभाविक है कि देवताओं के सामने आकर भौतिक इच्छाएं बढ़ती हैं, क्योंकि देवताओं के सामने हम कभी प्रेम से नहीं जाते, ना ही उनके उपासक प्रेम से जाते। उनके उपासक भी जो हैं वो केवल इच्छा पूर्ति के लिए जाते हैं, तो ये महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। थैंक यू प्रभु। ओके, हमें लगता है ये अपराधों पे ज्यादा हो जाएगी चर्चा। ठीक है, जय द्वारकापति प्रभु। प्रभु आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी।
हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा, अभी आ रही है
प्रभु जी। सेवेंथ पॉइंट है कि श्री कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करनी चाहिए।
यस।
और फिर ब्रैकेट में तो हालांकि लिखा हुआ है कैसे परिक्रमा करनी चाहिए, लेकिन ये पॉइंट समझ नहीं आया, परिक्रमा नहीं करनी चाहिए।
अब भक्ति शास्त्री क्लास में एक ही नहीं थे, हमने इस पॉइंट को एक जगह पर बताया था। अगर आप में से, अच्छा ठीक है आप तो नहीं थे, कोई और लोग जो अटेंड कर रहे हैं कोई बताएंगे आप में से क्यों परिक्रमा नहीं करते हैं भगवान के सामने। राधा चरण प्रभु, भक्ति शास्त्री क्लास फिर से प्रारंभ कराइए, हम पहली क्लास देने के लिए आ रहे हैं। क्यों भक्ति शास्त्री करना चाहिए, क्या महत्व है, फिर ईशोपनिषद शुरू करेंगे। अच्छा प्रभु, हमने ये समझाया था कि जब भगवान के पर्दा बंद हो, यहाँ पर लिखा है कि जैसे हम लोग प्रदक्षिणा करते हैं तो एक है भगवान का पर्दा जब बंद हो, दूसरा भगवान के सामने किसी की प्रदक्षिणा नहीं करनी चाहिए। जब भगवान के समक्ष हो, यही पॉइंट कह रहे हैं ना, कौन सा पॉइंट है आपका?
सेवेंथ नंबर,
श्री कृष्ण के समक्ष। हाँ, तो भगवान के समक्ष किसी की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, इसीलिए जब हम तुलसी की परिक्रमा करते हैं तो पर्दा बंद कर देते हैं। कारण ये है कि भगवान को आदर कम हो जाता है, भगवान के सामने केवल भगवान को आदर दिया जाता है, तो इस दृष्टि से हम लोग किसी की परिक्रमा एक आदर देना है ना।
हाँ,
हाँ, तो इसलिए भगवान के समक्ष नहीं करते। ठीक है,
आपने फर्स्ट क्लास में बताया था कि भूख लग रहा हो तब हमको प्रणाम नहीं करना चाहिए, वो तो मुझे याद था लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्लैरिटी नहीं।
इसका भी बताया था, और कभी कभी लोग ऐसे भगवान तुलसी की पूजा भी सामने कर लेते हैं। हाँ। छोटा सेटअप हो तो ठीक है, जहाँ व्यवस्था नहीं है पर्दा वर्दा बंद करने की तब ठीक है, लेकिन साधारणतः मंदिरों में पर्दा बंद करके फिर तुलसी की प्रदक्षिणा की।
थैंक
यू प्रभु।
प्रभु जी, पॉइंट नंबर 27 पर एक प्रश्न है, 27। अब इसमें जैसे माता जी लोग जब अर्चा वगैरह की सेवा करती हैं तो उनके लिए ये हर दिन संभव नहीं होता कि वो बालों के साथ बाल धोकर स्नान करें।
उनके लिए संभव क्या नहीं होता?
कि वो अपने बाल धोकर स्नान करें हर दिन, पूरा स्नान लिखा है ना, पूरी तरह स्नान किए बिना। तो माता जी लोग प्राय करके अपने बाल हर रोज नहीं धोती है, की पूजा करनी तो बाल धोके ही करनी चाहिए, इसके साथ ये हुआ?
नहीं, आवश्यक नहीं है। पूर्ण स्नान मतलब यहाँ पर जैसे पुजारियों में कभी कभी जैसे पुजारियों को बहुत बार जाना होता है, वे प्लीज थोड़ा बंद कीजिए अपने माइक को। तो पुजारियों में कभी कभी वे लोग हाथ और पांव खाली उतना धोते हैं, अगर अर्जेंट जाना होता है किसी कारण से, पूरा स्नान नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पूरे स्नान का अर्थ है कि संपूर्ण स्नान शरीर का करना चाहिए, और अगर स्वाभाविक है माता जी अगर वो रोज अपने बाल नहीं धोते हैं तो उसमें कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो अर्पण नहीं कर सकते। थैंक यू प्रभु। आगे तो कोई हाथ नहीं दिख रहे हैं, हमें लग रहा है कि 13वें अध्याय पे चले जाना चाहिए। ममता माता जी,
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, संकीर्तन में लिखा हुआ है कि एक तो संकीर्तन का अर्थ होता है भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक उच्चारण, और एक भगवान की लीला गुणों और रूप की महिमा का, तो इसका ये मतलब इसका भजन से अर्थ होता है अगर हम उनकी लीलाओं गुणों रूप का उच्चारण करते हैं।
कथा, कथा जैसे भगवान की कथाओं को कहना, तो ये भी संकीर्तन है। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने संकीर्तन किया, सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया, उनकी कथाओं को कहा, भगवान के रूप भगवान के गुण इत्यादि का वर्णन, तो वो भी संकीर्तन कहलाता
है। और एक प्रभु जी, अगुरु, अगुरु की सुगंध है इसमें, उसका क्या अर्थ होता है? और एक दोल यात्रा क्या होती है?
अगुरु ये एक बड़ा सुगंधित चीज जो भगवान को साधारणतः अर्पित किया जाता है, भगवान को बहुत प्रिय है, तो बड़ा सुगंधित पदार्थ होता है अगुरु, जैसे सेंट कह दीजिए, अच्छी प्रकार का वो सेंट होता है जो उससे आता है, तो इसलिए वो भगवान को अर्पण किया। किया जाता है। दूसरा क्या था आपका?
डोल यात्रा जो मार्च महीने में की जाती है भगवान की लीलाओं के लिए।
डोल डोल है क्या? कहाँ लिखा? कौन सा नंबर है
ये? 83-86 पेज नंबर
86। ये थोड़ी बुक्स में है, पेज गलत है, मतलब
आप नौवे अध्याय का है प्रभु जी।
हाँ जी,
नौवे अध्याय का है,
नौवे अध्याय का।
हाँ जी,
आरती तथा उत्सवों को देखना, हमारी बुक में तो वो लिखा।
हाँ जी वही।
हाँ तो उसमें क्या है? अच्छा, उत्सव कौन सा होता है?
डोल यात्रा के।
डोल यात्रा, ओके। मार्च के महीने में भगवान की लीलाएं, तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग मनाया जाता है। जगन्नाथपुरी में अलग होता है डोल यात्रा, और वृंदावन में अलग होता है, जहाँ झांकियां लगती हैं भगवान की, या फिर उनको बड़े अच्छे पुष्पों से, फूल बंगला कहते हैं, उससे सजाया जाता है। तो ऐसे ही अलग अलग तरीके से करते हैं। ये तब होता है कि ठंड खत्म हो जाती है, ठंड का महीना, और अब गर्मी शुरू नहीं हुई, तो ये बहुत अच्छा वातावरण होता है, पुष्प भी बहुत आते हैं, तो उस समय पर ये किया जाता है। ओके, आगे बढ़ें। अच्छा, इनमें अपराधों में हम देख रहे थे एक बड़े महत्वपूर्ण अपराध हैं नाम जप के प्रति 10 अपराध, जिसको हम लोग रोज कहते हैं। आशा करते हैं आपने पढ़े होंगे ये नाम अपराध। सो ये नाम अपराधों की जो सूची है, इसको थोड़ा सा हम केवल संक्षेप में बताना चाहेंगे कैसे हर एक नाम अपराध से हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये नाम अपराध के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना अच्छा है। वैसे आप लोग गणेश जी के बारे में भी पूछ रहे थे, हमें ध्यान आया एक जगह पर हमारे एक सन्यासी ने कहा है कि प्रभुपाद का आदेश है हमें कि हमें गणेश जी की पूजा करना या उनके विग्रह को रखना आवश्यक नहीं है, ऐसा कोई आदेश हमें प्रभुपाद से नहीं है, इसलिए हम लोग उसको नहीं करते हैं। तो 10 नाम अपराधों का हम लोग चर्चा कर रहे थे, जैसे हमने बताया। तो इसमें 10 जो नाम अपराध हैं, वो पहला अपराध यहाँ पर दिया गया है कि भक्तों के, जिन्होंने प्रचार के हेतु जीवन समर्पित किया है, उनकी निंदा करना। अगर हमसे ये अपराध हो जाए तो हमें इसको कैसे, इससे बचना चाहिए, ये हमें जानना है। तो हमने सोचा थोड़ा एक एक अपराध का संक्षेप में ऐसे वर्णन कर दें। तो पहला अपराध है कि निंदा करना। तो अगर किसी से अपराध हो जाए तो उन्हें उस भक्त के चरणों पर पड़कर उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए इस अपराध से दूर जाने के लिए। तो ये नियम है, तो इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि अगर हमसे कोई गलती हो गई, ऐसे भक्त के प्रति हमने निंदा कर दी, तो उनसे बड़ी गंभीरता से हमें क्षमा मांगनी चाहिए। हो सकता है कि आप क्षमा मांगें भक्त से और वो आपकी क्षमा से संतुष्ट ना हो। वैसे हम सोच रहे हैं ये हमें शुरू नहीं करना चाहिए था विषय, लेकिन फिर भी ठीक है, अब कर दिया है तो आगे, ऐसे कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं कि गलत चीजें शुरू कर दो तो फिर सारा लंबा चौड़ा कुछ कुछ हो जाता है। तो हमें पता है काफी प्रश्न होंगे। सो अगर भक्त से हम क्षमा मांगते हैं, भक्त संतुष्ट नहीं होते, और मान लीजिए आपको क्षमा नहीं करते, तो फिर क्या करना चाहिए? हमें उस भक्त की सेवा करनी चाहिए कई दिनों तक, जब तक संतुष्ट नहीं होते। और मान लीजिए कि बहुत बड़ा अपराध है और भक्त का क्रोध कम ही नहीं हो रहा, आपने क्षमा भी मांग ली, आपने सेवा भी कर ली, तब फिर क्या करना चाहिए? तब फिर व्यक्ति को पूर्ण रूप से भगवान के नाम का शरण लेनी चाहिए, भगवान के नाम का उच्चारण करने की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान के पवित्र नाम में इतनी शक्ति है कि वो व्यक्ति को किसी भी प्रकार के अपराध से मुक्त कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ वो एक चेतावनी देते हैं कि हमें इसका लाभ लेकर, हाँ ये तो ठीक है, हमें क्षमा मांगने से बचना नहीं चाहिए, ये दोनों चीज हैं, अगर ऐसा करेंगे तो और अपराध होगा, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। तो एक तरफ आपसे अपराध हो गया, वैष्णव अपराध, आपने निंदा कर दी, पहला अपराध किस भक्त की या उनके प्रति कोई भी अपराध किया, उनसे क्षमा मांगी, क्षमा नहीं करते हैं, मांगने के बाद भी उनकी सेवा की, फिर भी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, उनका क्रोध नहीं खत्म हो रहा है, तब भगवान के नाम की शरण। लेकिन ऐसे नहीं कि हमें बचना है, अरे उनसे कौन मांगे, हमें हमारा अहंकार टूटता है, कैसे जाएं, तो फिर ठीक है भगवान का हम चार माला एक्स्ट्रा जप कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं, वो और एक अपराध है, तो इसलिए इससे बचना चाहिए। तो ये पहला अपराध का यहाँ पर चर्चा हुई। दूसरा है देवताओं के नाम को भगवान के नाम के समान समझना। तो अगर किसी से ये अपराध हो जाता है तो कैसे उससे बचा जा सकता है, उस अपराध से हमें बुरे संग को त्यागना चाहिए, क्योंकि अगर हमने देवी देवताओं को भगवान के समान माना है तो उसका एक कारण हो सकता है कि हमारा संग ऐसा है, दूसरा कारण हो सकता है हमने कुछ ऐसे शास्त्रों को पढ़ लिया है जो प्रामाणिक नहीं। तो इसीलिए हमें सबसे पहली चीज, अगर हमने इस कार्य को किया है, जो भक्तों का गलत संग कर रहे हैं, तो संग को त्यागें और बहुत पश्चाताप हो, अगर हमने ऐसा कर भी लिया कि भगवान के समान देवताओं को समझ लिया, तो पश्चाताप होना चाहिए और भगवान पर ध्यान करना चाहिए। और इमेज जैसे ही तुरंत ऐसे कोई देवी देवताओं के भक्त हैं तो उनका संग त्याग कर भक्तों का संग करना चाहिए। ये दो चीज कि जब हो जाए तो हम क्षमा याचना या रिपेंट, मतलब बहुत मन में हमारे ग्लानी हो और हम उसके उससे बाहर आने के लिए भगवान कृष्ण पर ध्यान करें और अपने आप को ऐसे देवताओं के भक्तों से दूर रखें और भगवान के भक्तों का संग। तीसरा चीज, अगर गुरु के प्रति अपराध हो जाता है, गुरु का अवज्ञा, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते, तब क्या होना चाहिए, इसका भी कारण बुरा संग हो सकता है, अन्यथा क्या कारण है हम गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो बुरे संग को छोड़ना चाहिए। और जैसे हम बता रहे थे कि कभी कभी हम ऐसे शास्त्रों को पढ़ लेते हैं जिनका कोई आधार नहीं, जो प्रमाणिक नहीं है, उससे बहुत जल्दी गुरु के प्रति अपराध हो जाता है, गुरु की अवज्ञा हो जाती है, क्योंकि कहीं कहीं कुछ लिखा होता है आप ये कर सकते हो, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, परंपरा की आवश्यकता नहीं है, सारा ज्ञान दिया गया है, इस व्यक्ति को ऐसे मिल गया, उस व्यक्ति को ऐसे मिला, तो फिर अपराध हो जाता है, ये करना है। इस और क्या करना है, अगर हमारे से गुरु अवज्ञा हो गई है तो गुरु के चरणों में हमें गिरकर बड़ी ग्लानी भरे हुए हृदय से हमें उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए, ठीक है, ये तीसरा है। चौथा अपराध है कि कभी कभी हम लोग वैदिक शास्त्रों को उनकी निंदा कर देते हैं, तो उसकी क्या, उसका क्या उपाय है, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा शास्त्रों को सुने या उनको कहें, मतलब प्रचार करें शास्त्रों का, पहले उसको सुने ध्यान से, क्योंकि अगर शास्त्रों में हमने किसी चीज की निंदा कर दी है तो हमें शास्त्रों को सुनने से वो निंदा दूर हो जाती है। पांचवा अपराध है कि हम हरे कृष्ण कीर्तन की महिमा को काल्पनिक समझना, वैसे समझना कि काल्पनिक है, तो उसका क्या है, अगर ऐसा अपराध हमसे हो जाता है, हमें भक्तों के सभा में जाना चाहिए जहां भी भक्त हैं और सबके सामने हमें क्षमा याचना मांगनी चाहिए, अपनी जो हृदय में हमारे अंदर जो वो एक भावना है, हम पश्चाताप की भावना है, वो सबके सामने प्रकट करना चाहिए कि मैंने ऐसे सोच लिया कि पवित्र नाम की जो कल्प ये गुणगान है ये केवल कल्पना है, तो हमें सबके सामने क्षमा याचना करनी चाहिए। और फिर भगवान के भक्तों से बड़े ध्यान से भगवान के कार्यों को, भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए, इससे हम लोग ये अपराध से परे जा सकते हैं। छठा अपराध है भगवान के नाम पे अर्थवाद या मनमानी व्याख्या करना। तो ये तो अपराध से बचने के लिए सरल चीज है कि व्याख्या नहीं करना चाहिए अपने मन से, केवल आचार्यों की शिक्षाओं को हमें दोहराना चाहिए। सातवां अपराध है भगवान के नाम के बल पर पाप करना। तो उसका उपाय ये दिया गया है कि अगर हमारे से ऐसा हो जाता है तो हमें भक्तों के समक्ष जाकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हम मदद करें, उनसे सहायता मांगनी चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो लोग उस पथ के स्वामी हैं जहाँ जो हमें भक्ति की ओर ले जाता है। तो इसीलिए जब भक्तों के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो वो तो कहते हैं कि हमें जोर से चिल्लाना चाहिए, भक्तों से सहायता मांगनी चाहिए चिल्लाकर। और ऐसा होता है कि जैसे वो उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कोई रास्ते पर आप जा रहे हो और रास्ते पर जाते हुए कोई चोर आ गया अचानक, आपको उससे बचना क्या करोगे, जोर से चिल्लाओगे बचाओ बचाओ, कोई होगा आसपास तो बचाने आ जाएगा। तो कहते ऐसे हमें प्रयास करना चाहिए। अगला आठवां अपराध है भगवान के नाम के कीर्तन को एक शुभ अनुष्ठान जैसा समझना, कर्मकांड समझना इत्यादि। तो इसके लिए क्या है, अगर समझिए आप गृहस्थ हैं, आपसे ये अपराध हो जाता है तो कर्मकांड हमने सोचा, तो ऐसा करना चाहिए कि ऐसे, क्योंकि इसमें क्या होता है कर्मकांड करना ये बहुत शुभ है अनुष्ठान समझ लेना, तो उसमें हमारी थोड़ी सी भावना ऐसे हो जाती है कि हम बहुत ज्यादा कर्मकांडों में मतलब लगे हैं। तो इसको कहते हैं कि ऐसे करना चाहिए कि किसी एक वैष्णव के घर जाना चाहिए जो मूलतः किसी बहुत निम्न परिवार से हो, जाति के अनुसार निम्न परिवार से हो, उसके घर जाना चाहिए और उसके चरण की धूल लेकर अपने पूरे शरीर पर लगाना चाहिए बड़े आदर और श्रद्धा के साथ। ये इसका उपाय बताया है आचार्यों ने कि अगर हमारे से ऐसा हो जाए तो ऐसा करना चाहिए और फिर उनका उच्चिष्ट ग्रहण करना चाहिए। तो इस तरह सही भाव हमारा उत्पन्न होता है भगवान के नाम के प्रति। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं तो वो भी विस्तार में नहीं जा रहे। नौवां अपराध है कि अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। तो ये थोड़ा सा अपराध हमें भक्तों को, प्रचारकों को करना पड़ता है, रिस्क लेनी पड़ती है। तो लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है, समझिए अश्रद्धालु को हमने कर दिया तो वो कोई झूठा व्यक्ति है इत्यादि, या आपका कोई शिष्य, आपके कोई अनुयायी ऐसे हैं जिनको आप भगवान नाम की महिमा सुना रहे हो लेकिन उनमें कोई श्रद्धा नहीं है, तो उस व्यक्ति को दूर कर देना चाहिए। नहीं तो उसके द्वारा किया गया नाम अपराध वो गुरु के जो आध्यात्मिक शक्ति है उसको कम कर सकता है। तो इसीलिए बहुत सावधान रहना चाहिए कि किसी और शिष्यों को भी प्रयास करना चाहिए, लेकिन प्रचारकों के रूप में हम लोग इस रिस्क को लेते हैं थोड़ा सा आचार्यों के आदेशानुसार। कि अर्थात इसीलिए भगवान के नाम की महिमा को सबको वर्णन नहीं करते हैं। हम सबको कहते हैं भगवान का नाम लीजिए, वो कोई अपराध नहीं है। बड़ा जैसे प्रवचन होता है, कई लोग बैठे हैं और अगर हम उसमें कहते हैं कि आप सबको भगवान का नाम लेना चाहिए, वो कोई अपराध नहीं है। भगवान के नाम की महिमा को बताना, जैसे कि उदाहरण में शुरुआत के में ही आप किसी को बताएं पहले दिन ही कि आप जानते हैं कि जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो आपकी जिह्वा पर राधा और कृष्ण नृत्य करते हैं, उस व्यक्ति में श्रद्धा नहीं है, इस चीज को उसको नहीं बताना। हमें ये बता सकते हैं कि हाँ नाम लीजिए, और प्रचारक यही करते हैं, नाम लेने के लिए कहते हैं, तो इसलिए कोई उसमें गलती नहीं है। जब उसमें श्रद्धा आ जाए तब नाम की महिमा को बताया जाता है कि नाम है क्या, तो इसलिए ये अपराध से भी हमें थोड़ा बचना चाहिए। और आखिरी अपराध है भगवान के नाम में, इन उपदेशों को समझ लेने के बाद भी नाम कीर्तन में श्रद्धा ना रखकर भौतिक आसक्ति बनाए रखना। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें जितनी भौतिक आसक्तियां हैं उसको त्याग कर स्वाभाविक रूप से या स्वेच्छा से थोड़ी सी तपस्या करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप बड़े ऐश्वर्य में रहते हैं तो फिर आपको स्वेच्छा से कुछ थोड़ी सी तपस्याएं करनी चाहिए। जैसे इस समय पुरुषोत्तम महीने में आप लोग कई तपस्याएं कर रहे हैं, आप लोगों ने किसी ने खाना छोड़ दिया है, किसी ने सोना कम कर दिया है, जो भी आप लोग सब महान लोग हैं, हमें पता है काफी अच्छा कुछ कर रहे हैं, सो और भी पता नहीं क्या क्या छोड़ा होगा आप लोगों ने, तो जो भी है थोड़ी तपस्याएं हैं तो उसको करना चाहिए, अर्थात थोड़ा सा भौतिक आसक्ति कम करना चाहिए, कृष्ण के चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए और भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। देखिए नाम में बहुत शक्ति है, और साथ ही साथ ऐसे साधुओं का या भक्तों का संग ढूंढना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए बिना किसी भौतिक कारण के। वैसे भी साधुओं की सेवा बिना भौतिक कारण के ही होती है, नहीं तो वो सेवा नहीं होती। साधुओं के पास जाकर, जैसे प्रभुपाद के पास एक आए, स्वामी जी मेरे लड़के को आशीर्वाद दीजिए, प्रभुपाद ने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है, फिर आ गए दो तीन बार चार बार, तो जब बार बार आ रहा है कि आशीर्वाद दीजिए तो प्रभुपाद ने दिखाया ब्रह्मचारी बैठे थे, मेरा आशीर्वाद ये है सर शेव कर ब्रह्मचारी बनाना, उसके बाद वो फिर कभी नहीं आए मांगने के लिए कुछ प्रभुपाद से आशीर्वाद। तो ऐसे लोग आते रहते हैं, तो हमें साधुओं के पास उस कारण से नहीं, साधुओं के पास जाना चाहिए उनकी सेवा करने के लिए और बिना किसी इच्छा के, ये सही उद्देश्य है साधु के पास जाना, और फिर उनसे श्रवण। इसीलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो साधु के पास जाना है तो क्या करना है, सेवा करनी है नम्रता से और फिर उनसे श्रवण करना है, बस और क्या है साधु के पास, वैसे भी क्या है देने के लिए। तो इस तरह से हमें ये 10 अपराधों से बचना चाहिए। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण अपराध है, यहाँ नहीं लिखा लेकिन हम लोग सब जानते हैं, ध्यान पूर्वक जप ना करना बहुत बड़ा अपराध है। भक्ति विनोद ठाकुर ने इसके लिए बहुत विस्तार से चर्चा की है कि कैसे इससे हम दूर हो सकते हैं, औदासीन्य जड्य विक्षेप बहुत कुछ कहा है, अभी उतना समय नहीं है इसके लिए, बस इतना 10 अपराधों से आप बच जाएं, 11वां भी धीरे धीरे बच जाएंगे आप, ठीक है। सो आगे बढ़ें, 9वें अध्याय में से आप लोगों को कुछ, आपने अगर पढ़ाई की है तो किसी को कुछ प्रश्न है, या फिर 10वें अध्याय को करें। निंदा के बारे में तो एक एक हम पढ़ते हैं, और अगर उसमें कोई महत्वपूर्ण है तो आप बताइए, कोई प्रश्न है। निंदा करना ये तो आप सब जानते हैं, मतलब निंदा करना नहीं जानते हैं लेकिन निंदा नहीं करना चाहिए, ये सब तो आपको पता है, और निंदा करने से कितना नुकसान होता है। तिलक और तुलसी कंठी पहननी चाहिए, उसके उदाहरण दिए हैं, उदाहरण पुराणों से कि आवश्यक है तिलक और कंठी पहनना। फूल मालाएं स्वीकार करना चाहिए भगवान को जो अर्पित हैं, स्वयं भागवत में भगवान ने इसको कहा है। अर्च विग्रह के समक्ष नाचना चाहिए, तो ऐसे नहीं कि बस जाकर खड़े हो जाएं, ये नियम है कि नाचना चाहिए। यहाँ पर वो वर्णन किया है कि जो व्यक्ति अर्च विग्रह के समक्ष ताली बजाता है और नाचता है उसके शरीर के पाप कर्म रूपी पक्षी ऊपर उड़ जाते हैं। तो पक्षियों को बनाकर मत रखिए, उड़ाइए उन्हें, स्वतंत्र कीजिए, ठीक है। सो ये नाचना चाहिए, अर्च विग्रह के सम्मान में नतमस्तक होना चाहिए, स्वाभाविक है भगवान को जाए तो प्रणाम करना चाहिए, भगवान का स्वागत करने के लिए खड़े होना चाहिए। ये भगवान आए हैं, भगवान ही नहीं वैष्णव भी आए, ऐसा वर्णन है कि अगर वैष्णव आए और आप उठकर खड़े ना हो तो ये अपराध माना जाता है। अर्च विग्रह का पीछे पीछे चलना चाहिए, भविष्य पुराण में कहा है, ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है कि अधिको रथ यात्रा के समय भगवान के रथम च बामने दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, तो पीछे पीछे चलना चाहिए। और अगर किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ है तो पीछे पीछे चलना मतलब एक एक आदर देना, ये सारी चीजें आदर देने के लिए। विष्णु मंदिर या तीर्थ स्थानों की यात्रा करनी चाहिए, आप सब करते ही हैं, पता नहीं इस बार कार्तिक में हो पाएगा कि नहीं, लेकिन वैसे आप सबके लिए बताते हैं, आप सबको प्रसन्न करने के लिए बताते हैं कि इस शनिवार को हम गोवर्धन परिक्रमा के लिए जा रहे हैं। तो ये जो नियम है हमने पढ़ा, तो हमने कहा कुछ करना चाहिए, पुरुषोत्तम महीना है तो इसीलिए शनिवार को जाएंगे, रविवार की सुबह वहाँ पर परिक्रमा करेंगे, कुछ भक्त भी जा रहे हैं यहाँ से साथ में, तो फिर वहाँ कथा वथा होगी गोविंद कुंड में बैठकर, और फिर आराम से अगले दिन वापस आएंगे। सो हम भी कुछ कुछ नियम का पालन करते हैं जो इसमें लिखा है, इसलिए आपको बता रहे हैं। और विष्णु मंदिर की परिक्रमा करना ये भी नियम है, हर मंदिर में ये व्यवस्था होनी चाहिए, कहीं कहीं मंदिरों में नहीं होती, हमारे जैनाइन में नहीं है, तो मानसिक कर लिया करिए, क्योंकि जब तक व्यवस्था, आपको जब नया मंदिर बनेगा तो उसमें ये व्यवस्था होगी कि परिक्रमा करने का स्थान हो, तो इसमें करना चाहिए। और अर्चना, अर्च विग्रह की पूजा करना, तो ये तो आप सब जानते हैं, भगवान की सेवा करना बहुत कुछ लिखा गया है उस विषय में कि बहुत महत्वपूर्ण है। गाना, भगवान की कीर्ति को गाना चाहिए, संकीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन होना चाहिए, जप करना चाहिए, ये सब आप लोगों को पता है, इसलिए हम लोग इस पर चर्चा करें करना आवश्यक नहीं समझ रहे हैं। निवेदन करना मतलब भगवान को अपनी प्रार्थनाएं अर्पण करना, ये भी आवश्यक है। तो प्रार्थनाओं के प्रकार दिए गए हैं, संप्रार्थनात्मिका, दैन्य बोधिका, लालसामय प्रार्थना। सो कौन सी प्रार्थनाएं करनी चाहिए, एक प्रश्न आता है, व्यक्ति को अपने मन से कुछ प्रार्थना करनी चाहिए या केवल आचार्यों की प्रार्थना को दोहराना चाहिए, आप लोगों का क्या सोचना है, कोई उत्तर बताएं कि हमें मन से कर लेनी चाहिए जो हमारे मन में आए, या केवल आचार्यों की प्रार्थना को दोहराना चाहिए, कौन बताएंगे? ओके, जय श्री राधा माता जी।
प्रभु जी आपने बताया था हम मन से प्रार्थनाएं कर सकते हैं, लेकिन अंत में कहना मेरी सुनना मत, जो मेरे में अच्छा नहीं करना।
अच्छा हाँ, वो तो एक प्रार्थना है, क्योंकि वो हमारी जो प्रार्थना होती है दूषित होती है, सही तो होती नहीं है, इसीलिए भगवान सुन लेंगे तो तकलीफ हो जाएगी। वेरी गुड, और कोई आप में से बताइए कि प्रार्थना करना चाहिए भगवान को अपने मन की या केवल आचार्यों की प्रार्थना को दोहराना चाहिए? जानवी प्रिय मत जी, हाँ हाँ यस मत जी, म्यूट है,
हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आपने कहा था कि हमें दोनों प्रार्थनाएं करनी चाहिए, मतलब हम अपने मन से भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा है अगर हम जो आचार्य हैं उनकी प्रार्थनाओं को दोहराएं, क्योंकि उनकी प्रार्थनाएं एकदम परफेक्ट हैं, लेकिन कभी कभी हमें अपने मन से भी प्रार्थना करनी चाहिए, अपने उद्गार भी भगवान के सामने व्यक्त करने चाहिए।
बहुत अच्छा, यस हमें करने चाहिए। और खैर अभी और भी कुछ लोग बोलने वाले हैं, बोलने उसके बाद हम बोलेंगे। कलावती माता जी,
पहले तो व्यक्ति को आता नहीं है कि भगवान से क्या मांगना है, क्या प्रार्थना करनी चाहिए, तो आचार्यों के पथ निर्देशन में रह के उनकी प्रार्थनाओं को फॉलो करते करते ग्रेजुअली ही कम सुनो कि उसको क्या मांगना चाहिए। तो आचार्यों की प्रार्थनाओं का अनुगमन करते हुए जब वो उस पथ पे चलते हैं तो हार्ट से जो रियल प्रार्थना निकलती है उस मार्ग पर चलने के लिए वो हम कर सकते हैं। जनरली हमको उन्हीं की प्रार्थनाओं को ऑफर करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हम देखते हैं भागवतम फुल ऑफ प्रेयर्स हैं, ब्रह्मा जी ने भी की हैं, तो अगर हम उनको भी दोहराते हैं तो उसके अंदर हमारा सब कुछ आ ही जाता है।
थैंक यू बरसाना ईशानी माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों प्रणाम।
हमें
दोनों ही प्रार्थना करनी चाहिए, एक आचार्यों की और खुद की भी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे भी कुछ पर्सनल बातें होती हैं जो हम भगवान से शेयर करना चाहते हैं, वो एज ए प्रार्थना हम कर सकते हैं। हरे कृष्ण।
हाँ, बहुत अच्छा, थैंक यू। यस, सो ऐसा नहीं है कि हम पर्सनल प्रार्थना नहीं कर सकते, केवल उनको दोहराना है, क्योंकि उससे हमारे हृदय के जो भाव हैं वो कृष्ण तक शायद ना पहुंचा पाए हम, तो इसलिए दोनों प्रार्थनाएं कर सकते हैं। इस जगदीशानंद प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु अनम्यूट करना।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम।
हरे कृष्णा
प्रभु। आचार्य की प्रार्थना में हमारी प्रार्थनाएं सम्मिलित हो जाती हैं। आचार्य ने जो शुद्ध प्रार्थनाएं की हैं उससे बढ़िया कोई प्रार्थना हो नहीं सकती है, इसलिए मैं आचार्य की प्रार्थना को दोहराना चाहिए।
बहुत अच्छा, वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। यस, अगर आचार्य जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो तीन चार प्रकार की प्रार्थनाओं को दिया गया है, संप्रार्थनात्मिका, दैन्य बोधिका, लालसामयी, उनको दोहराए बहुत अच्छा है, लेकिन अपने भी उद्गार प्रकट कर सकते हैं। प्रभुपाद इसके अंत में लिखते हैं, ये जो विभाग है, दूसरे शब्दों में मनुष्य को सीखना चाहिए कि भगवान को किस तरह रोकर पुकारा जाए। इस छोटी सी युक्ति को सीखना चाहिए और किसी विशेष प्रकार की सेवा में लगने के लिए उत्सुक होकर सचमुच रोकर पुकारना चाहिए। यह लौलियम कहलाता है और ऐसे आंसू सर्वोच्च सिद्धि का मूल्य है। यदि कोई विशेष प्रकार से भगवान से मिलने और उनकी सेवा करने के लिए अत्यधिक उत्सुकता विकसित करता है, जो लौल्यम कहलाता है, तो उसी मूल्य को चुकाकर वे भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। अन्यथा किसी भी भौतिक मूल्य के टिकट के बल पर वे भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे प्रवेश के लिए जो मूल्य देना पड़ता है वो यही लौल्यम अर्थात लालसामयी इच्छा या महान उत्कंठा है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं हमें सीखना चाहिए कैसे रोकर पुकारा जाए। हाँ, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में हमारा मन इतना दूषित होता है कि हम भगवान को गलत कारणों से पुकारते हैं, गलत इच्छा लेकर पुकारते हैं, बिना प्रेम के, बिना अपना संबंध स्थापित किए पुकारते हैं। तो इसलिए प्रारंभ में भी और बाद में भी आचार्यों की शिक्षाओं को, आचार्यों की प्रार्थना को दोहराएं, लेकिन साथ साथ मनुष्य को सीखना चाहिए कि कैसे रोक कर पुकारा जाए भगवान को। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं सीखेंगे कि भगवान को कैसे पुकारना है, कैसे रोकर पुकारना है, तो हमारा जो पुकारना है वो भी एक आर्टिफिशियल हो जाएगा। जैसे कई लोग भजन गाते हैं जो करते सारे गलत काम हैं, लेकिन वो भजन गाते हैं, भजन इतने अच्छे गाते हैं कि लोगों को बड़ा आनंद आता है। हम ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तियों को जानते हैं जो बड़े प्रसिद्ध हैं भजन गायक, लेकिन वो जब तक कुछ गलत तर ना कर लें तब तक वो गा नहीं सकते। तो ये कोई ना तो भक्ति है, ये तो अपराध है। तो भक्त को क्या सीखना चाहिए? भक्त को जेन्युइनली भगवान के सामने रोना सीखना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे आंखों से आंसू नहीं आ रहे तो हम भक्त नहीं हैं, या जानबूझ के जाकर भगवान के सामने रोना शुरू कर दें ताकि लोग देखें कितना महान भक्त है, देखो आंखों से आंसू आ रहे हैं। नहीं, ये स्वाभाविक सीखना चाहिए। मतलब वो स्वाभाविक, जब हम किसी को पुकारते हैं, जब हम किसी को सही में कुछ मांगते तो हमारी आंखों से स्वतः आंसू निकलते हैं, उस तरह का भाव। एक बार हमारे एक सन्यासी से हमें ध्यान है कि भागवतम क्लास के अंत में एक माताजी ने प्रश्न किया कि मैं जब भगवान का नाम लेती हूँ मेरे आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, तो कैसा आप बताइए। तो महाराज ने कहा हमने यहाँ बोर्ड तो नहीं लगा रखा है कि नो क्राइंग, रोना नहीं है, आप रो सकते हैं। लेकिन उन्होंने समझाया कि ये रोना कब होना चाहिए, जब हमने शास्त्रों को समझ लिया है, जब हमने आचार्यों की शिक्षाओं का पालन कर लिया है, जब हमारा मन शुद्ध हो गया है, तब उस शुद्ध मन से जो आंसू निकलते हैं उनका वर्णन यहाँ हो रहा है। ये मत सोचिएगा कि हमने आंखों में वो संतरे का जूस डालकर उसको आंखों में या कुछ ग्लिसरीन डालकर निकाल लिए हैं और फिर हमारे लिए मूल्य, बिल्कुल नहीं। तो कब है, जब ये कर लिया है, अर्थात शुद्ध अवस्था में, ठीक है। इसीलिए नेक्स्ट है प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करना। तो प्रसिद्ध प्रार्थनाओं को दोहराना चाहिए, भगवान के भक्तों की शक्ति होती है उसमें, और साथ ही साथ उनकी कृपा मिलती है। तो इसीलिए जो प्रार्थनाएं करनी है, भजन गाने हैं, वो भजन तो विशेष करके वैष्णवों के होने चाहिए, वैष्णव भजन। हमारे अंदर बड़ा आनंद आता है इधर उधर के भजन गा लेने में, कभी कभार ठीक है, कभी कभार उत्सवों के समय या अन्य कोई ऐसा अवसर हो, बहुत कम तो ठीक है, लेकिन साधारणतः वैष्णव भजन गाने चाहिए। हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुजनों ने यही हमको सिखलाया, क्योंकि उनसे हृदय शुद्ध होता है, कृष्ण प्रसन्न होते हैं, आचार्यों की कृपा आती है, इसलिए उनको गाना चाहिए हमें। अच्छे तो बहुत कुछ लगते हैं, शाम चूड़ी बेचने आया और पता नहीं क्या क्या बेचते हैं वो, जो भी है, तो वो अच्छा तो बहुत लगता है गाना। फूलों में सज रही हैं, सज रहे हैं वृंदावन बिहारी, और भी बहुत कुछ ऐसे। तो अगर आपको याद है तो हमने कहा था अच्छा और सही में चुनने के लिए बल लगता है। ये पता नहीं आप में से किसी को याद है ये वाक्य, सुना आपने? खैर आप शायद मिस कर गए होंगे, भागवतम में जब हम वर्णन कर रहे थे अर्जुन का भी, तो अच्छा और सही इन दोनों में चुनने के, अच्छा तो कोई भी चुन लेता है, लेकिन सही चुनना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अर्जुन के लिए क्या दुविधा थी, अर्जुन को अच्छा क्या लग रहा था, मारू नहीं, मेरे गुरुजन हैं, मेरे वरिष्ठ जन हैं, ये अच्छा लग रहा था, लेकिन सही क्या था, मारना है। और वो अर्जुन के लिए बड़ा दुखदायी था, आंखों में आंसू लाने वाला था। दूसरे अध्याय में वर्णन है, तम तथा कृपया वृष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम। अर्जुन उस समय नहीं, जिस समय तीर चला रहा था भीष्म देव पर पीछे छुपकर, तब भी उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन उसको चलाना था क्योंकि वो सही था। तो इसीलिए कभी कभी अच्छा लगना और सही इन दोनों में चुनने के लिए सही चुनने के लिए बल लगता है। कष्ट होता है लेकिन चुनना चाहिए। तो इसी तरह यहाँ कहा गया है कि भगवान की जो भक्तों के द्वारा प्रार्थनाएं हैं उनको हमें कहना चाहिए, और प्रार्थनाएं कहना आवश्यक है। जब हम भगवान के समक्ष जाएं, प्रार्थना अर्पण करना ही चाहिए। अगर आपको कोई प्रार्थना याद नहीं आ रही है तो महामंत्र कहिए, वो भी एक प्रार्थना है कि भगवान मुझे सेवा में लगाइए। लेकिन भगवान के समक्ष जाकर, जैसे यहाँ लिखा गया नरसिंह पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के अर्च विग्रह के समक्ष पहुंचते ही विभिन्न प्रार्थनाओं का पाठ करने लगता है, वे सारे पाप कर्मों के फलों से तुरंत मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए हमें प्रार्थनाएं अर्पण करनी चाहिए। और आगे है प्रसाद, एक दो हाथ दिखाई दे रहे हैं। यस, जय द्वारका पति प्रभु।
हरि बोल प्रभु जी। एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है माइंड में कि एक बार अभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि नारद पंचरात्र में लालसा में प्रार्थना की कथन दिया हुआ है। भक्त कहता है, हे प्रभु, वह दिन कब आएगा जब आप मुझसे अपने शरीर पर पंखा जलने के लिए कहेंगे और आप ये स्वेच्छा से यह कहेंगे, मतलब ऐसा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये तो एकदम पर्सनल और एक इंटीमेट बहुत हाई लेवल की सर्विस हो गई जो भक्त इस तरह की लालसा में प्रार्थना कर रहा है। तो एक बार लेक्चर में सार्वभौम प्रभु का लेक्चर था, उन्होंने बताया था कि हम जो यहाँ पर सेवाएं कर रहे हैं ना, यही सेवाएं हम गोलोक में जाके करेंगे। जैसे हम यहाँ पे फूलों की माला बना रहे हैं, तो फूलों की माला बना रहे हैं तो हमारे फूल की माला में जो माला कभी भगवान के पास जाएगी, राधा रानी कभी अर्पित करेंगी, तो बताएंगी भाई ये उस भक्त ने बनाई है। तो लेकिन ये यहाँ पर मतलब हम वहाँ पे दासानुदास, हमको ये सिखाया जाता है कि हम दासानुदास कैसे बनना है, दास दास उनका दास, फिर तो यहाँ पर तो एकदम पर्सनल और एक इंटीमेट सेवा की बात हो रही है, तो भक्त ऐसी प्रार्थना हम लोग कर सकते हैं?
हाँ निश्चित, क्योंकि यहाँ जो स्तर भी देखना चाहिए भक्ति का क्या है, और ऐसी पर्सनल इंटीमेट प्रार्थना करना कोई गलत नहीं है, क्योंकि अगर ये ऐसी इंटीमेट प्रार्थना की कामना कर रहे हैं तो करेंगे कैसे? वो प्रार्थना वो सेवा भी आपको तभी मिलेगी जिसके आज्ञा ये करीबो सेवा चरणार विंदरे। तो सेवा की कामना करना कोई गलती नहीं है, अगर हम भगवान को, ये व्यक्ति के भक्ति के रस को उत्पन्न करने के बाद कितना गाढ़ा वो रस हो गया है उसके आधार पर ऐसी प्रार्थनाएं आती हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी का वात्सल्य रस बहुत गाढ़ा हो गया है तो वो भगवान को प्रार्थना करेगा कि मैं आपको स्तनपान कराना चाहता हूं, तो ये उसका वात्सल्य रस इतना गाढ़ा हो गया है यशोदा की तरह, जहां उनको आनंद और किसी चीज में नहीं आएगा। तो इसलिए ऐसे ये जो प्रार्थनाएं हैं ये उस समय के लिए हैं जब हमारा शुद्धिकरण या हमारा स्तर बहुत ऊंचा है, लेकिन अन्यथा हमें आचार्यों के बताए मार्ग पर चलना चाहिए, और वहां भी आज्ञा से ही होगा। ये नहीं है कि अगर हमने कामना कर ली कि मुझे आपको पंखा चलाना है तो भगवान बिना किसी, हमें बिना किसी सेवक के, बिना आज्ञा के हम कर सकेंगे। भाव है कि हमें करना है, कैसे करना है वो अलग हो सकता है आज्ञा के द्वारा। ठीक है
प्रभु जी, इस विषय में मैं कुछ निवेदन।
हाँ जी कांगे प्रभु, यस प्रभु, राधे चरण प्रभु।
प्रभु जी असल में होता क्या है, हम लोग सुनते हैं कि प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, प्रार्थनाओं का बड़ा महत्व है और सही बात भी है ये, लेकिन गड़बड़ काम हो जाती है जब हम अपनी किसी दुविधा को दूर करने के लिए, कष्ट को दूर करने के लिए या कुछ प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन में ये भाव होता है क्योंकि मैंने प्रार्थना करी इसलिए ऐसा हो ही जाएगा या हो ही जाना चाहिए। कृष्ण शुड डू व्हाट आई वांट, नॉट आई शुड डू व्हाट कृष्ण वांट। ठाकुर भक्ति नोट कहते हैं षडंग शरणागति होई वे जहार तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो हम शरणागत तो पूर्ण है नहीं वहां, लेकिन हम अपने मन में समझ बैठते हैं कि अब क्योंकि मैंने प्रार्थना कर दी तो अब कृष्ण को तो वो करना चाहिए, करना पड़ेगा ही, कम से कम करना ही चाहिए। वहां आके हमारे विश्वास को फिर टकराव आता है, हम ये भूल जाते हैं कि हमारा काम प्रार्थना निवेदन कर देना है, उसके बाद कृष्ण को करना या क्या नहीं करना है वो उनका डिपार्टमेंट है, वहां वो भूल जाते हैं। सबसे बड़ी गड़बड़ वहां होती है और उससे हमारे विश्वास पे भी ठेस पहुंचती है, मन में असंतुष्टि भी आती है जो है, और मतलब उतने अच्छे जप या उतना शरणागति या कृतज्ञता नहीं रह पाती है। ये एक
यस 100% करेक्ट, थैंक यू। ओके और कोई कुछ? निकुंज राधा मात जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है?
हाँ जी बहुत स्पष्ट आ रही है।
हाँ प्रभु जी, प्रार्थना तो करती हूँ पर मैं बातें भी बहुत करती हूँ, मतलब कुछ भी यदि कोई घर पे कुछ हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, कोई अच्छी न्यूज आई तो मैं सब जाके उनसे बोलती हूँ। तो क्या ये क्योंकि एक लेक्चर में मैंने सुना था कि इससे रिलेशन डेवलप होते हैं आपके अर्चा विग्रह के साथ, आपके माधव के साथ।
प्रभुपाद ने प्रारंभ में भक्तों से कहा था कि जो भी लाओ भगवान को अर्पण करो। तो नए नए थे तो वे जीन्स खरीद कर लाते थे, टी शर्ट लाते थे, भगवान को अर्पण करते थे। आज वो सारे शुद्ध भक्त हैं। कुछ और उत्तर दें आपका या ठीक?
थैंक यू सो मच।
ओके स्मिता राधिका माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा
प्रभु जी, जो आता है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए या भगवान के लिए हमें रोना चाहिए, लेकिन हमें भगवान के लिए तो मुझे रोना नहीं आता, या कभी साल में एक दो बार ऐसा हो सकता है कि मीन्स हम बहुत ज्यादा भाव में है या बहुत मिस किया है, जैसे अभी वृंदावन को इतना मिस कर रहे हैं तो हो सकता है वहां जाएंगे तो आंसू निकल आए, मतलब ऐसा साल में एक या दो बार होगा, लेकिन जब करते समय हमें हमारी प्रॉब्लम्स को लेके रोना आता है और वो इतना आता है कि वो रुकता नहीं है, मतलब कंटिन्यू, तो ऐसे लगता है कि जो भगवान के लिए रोना आना चाहिए वो खुद के लिए इतना आ रहा है और वो कंट्रोल भी नहीं हो रहा है, तो इस चीज को हम कैसे कंट्रोल करें?
ऑफकोर्स पहली चीज है कि अगर हम भगवान के लिए नहीं रो सकते तो हमें उसके लिए रोना चाहिए कि मुझे भगवान के लिए रोना नहीं आ रहा, कम से कम उसके लिए रोना चाहिए हमें। लेकिन एनीवे बात यह है कि भगवान के लिए रोना आना ये इतना सरल नहीं है, क्योंकि जैसे अभी आपने बताया और यही कारण है कि अभी हमारी हृदय पूरा भौतिकता से शुद्ध नहीं हुआ है, आसक्तियों से शुद्ध नहीं हुआ है कृष्ण के लिए रोने के लिए। इसलिए प्रभुपाद यहाँ लिखने सीखना चाहिए मनुष्य को, क्योंकि ये चीज बहुत कठिन है कि जहाँ हम बड़ी स्वाभाविकता से भगवान के लिए रोएं, जैसे हम अपनी संतान के लिए रो सकते हैं, जैसे हम अपने किसी प्रियजन के लिए रो सकते हैं या अपने कष्टों में रो सकते हैं, उसका कारण है कि अभी शुद्धिकरण नहीं हुआ। लेकिन मार्ग क्या है? क्या हम ऐसे बैठे रहेंगे ठीक है शुद्धिकरण नहीं हुआ? मार्ग ये है कि हमें जो मार्ग आचार्यों ने दिया उसको गंभीरता से पालन करते रहें, स्थिति अपने आप पाए। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है, मेरी आंखों से आंसू निकले या नहीं निकले, ये चिंता नहीं कीजिए। चिंता ये कीजिए कि क्या मैंने भगवान के नाम का जब ध्यानपूर्वक किया या नहीं, हमारी चिंता ये होनी चाहिए। आंसू अपने आप निकले, तुम कहने का तात्पर्य क्या है? आंसू आने का कारण है प्रेम, प्रेम का कारण है शुद्धता, और शुद्धता का कारण है ध्यान पूर्वक की गई साधना। तो अगर हम ध्यान पूर्वक साधना नहीं कर रहे हैं शुद्धता नहीं है, शुद्धता नहीं है तो प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है तो आंसू नहीं है। तो इसलिए हमें अपनी साधना को ध्यान रखना है। तो हम ये चिंता ही नहीं करें कि आंखों में आंसू क्यों नहीं आ रहे, हम चिंता ये करें कि मैंने ध्यान पूर्वक सुना या नहीं सुना, आज मैंने दिन में 16 माला कर लिया या नहीं कर लिया जो मेरा वचन है, मैंने 1 घंटा 2 घंटा जो भी श्रवण करना है वो कर लिया या नहीं। अभी हमारी चिंता यही है, आगे की चिंता कृष्ण करें। जैसे एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, एक बच्चा जैसे स्कूल में पढ़ता है तो वो चिंता करता है अपनी पढ़ाई की, और बाकी की आगे की चिंता क्या करना है, उसके लिए कपड़े आएंगे नहीं आएंगे वो माता पिता करते हैं, उसको अपनी पढ़ाई की चिंता करें बहुत अच्छा। यस, और क्या कह रहे थे आप?
बस प्रभु जी यही बोल रही थी कि खुद के लिए रोना आता है और उसमें गिल्ट भी फील होता है कि अपने लिए रोना आ रहा है और भगवान के लिए नहीं आता है, तो ऐसे लगता है कि क्यों हमारे मन से वो बात निकलती नहीं है।
आ जाएगा, शुद्धिकरण होगा वो भी आ जाएगा, बस अपना मार्ग का पालन करते रहे। इस गौरांग प्रिय प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे जब हमारे साथ प्रभु रूप में नहीं है तो अगर हमें उनको याद करके रोना आता है और भगवान के लिए रोना नहीं आता तो हम उसे कैसे समझे?
भागवत श्लोक है, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येत कथितम यर्थम प्रकाशन्ते महात्मनः। अगर हमारा ये रोना गुरु के प्रति है और केवल इसलिए क्योंकि हम आध्यात्मिक स्तर पर उनसे जुड़े हुए थे जो स्वाभाविक है, उसमें कोई गलती नहीं है। अगर हम उनके लिए, क्योंकि आपका जो संबंध गुरु से था वो किस लिए था? कृष्ण के कारण। हाँ, अगर ऐसा कोई संबंध होता, चाहे वो गुरु ही हो लेकिन हमारा संबंध केवल इस स्तर पर है कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया था या व्हाटएवर, हमारा संबंध गुरु से होता है क्योंकि वो कृष्ण से जुड़े हैं, अर्थात इनडायरेक्टली हमारा संबंध कृष्ण से है, तो इसलिए कोई गलती नहीं है। अगर हमारे मन में कृष्ण के लिए नहीं आ रहे हैं, गुरु के प्रति आते हैं, कोई गलती नहीं। लेकिन साथ साथ ये भी सीखना जरूरी है कि गुरु वो हमेशा साथ रहते हैं, और इस बात को इस भावना के स्तर पर लाना चाहिए हमें कि गुरु जब साथ में या शारीरिक रूप से रहते हैं तब वो बहुत थोड़े लोगों को संग दे पाते हैं, लेकिन इस समय गुरु बहुत से लोगों को संग देते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर समझाते हैं कि वैष्णव कभी जाते नहीं है, वो कभी मरते नहीं है, और जो ऐसा सोचता है कि वो गलत फीलिंग है उसके लिए। तो इसलिए हमारे भाव ये होना चाहिए, यस आंसू आना कोई गलती नहीं है, लेकिन आंसू आने पर हम करते क्या है वो महत्वपूर्ण है। क्या आंसू आने पर, गुरु का स्मरण आने पर हम केवल रोते रहते हैं, या उनकी शिक्षाओं को याद करके अपने जीवन को बदलने का प्रयास करते हैं? वो महत्वपूर्ण है। इसलिए आंसू आना कोई गलती नहीं है, लेकिन आंसू आने के बाद क्या कर रहे हैं? क्या हमें ये सोचना चाहिए आंसू आने के बाद कि हम गुरु का स्मरण कर रहे हैं तो क्या हमारे कार्यों से गुरु प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं? जैसे हमने कहा गुरु कहीं नहीं जाते हैं, तो आज भी आपके कार्यों को देख रहे हैं, तो आपको अब और तीव्रता से कार्य करने चाहिए। जैसे कहा जाता है कि जब गुरु समक्ष हो तो स्वाभाविक है हम बड़े अच्छी से भक्ति करें, और गुरु ना हो तो उससे भी तीव्रता से भक्ति करें जिससे गुरु प्रसन्न हो सके। तो इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि अब हम आंसू आ गए, अब हम क्या करें? अब हम वो करें जो हमारे गुरु चाहते थे। हमारे गुरु चाहते थे कि हम लोग अच्छे भक्त बने, हमारे गुरु चाहते थे कि हम प्रचार करें, हमारे गुरु चाहते थे कि हम नियमों का कड़ाई से पालन करें, हमारे गुरु चाहते थे कि हम सब मिलकर एक साथ रहें, सहयोग से रहें। आप सोचिए कि जब अलग अलग दल होते हैं तो क्या गुरु बड़े प्रसन्न होते हैं कि बहुत अच्छा है, और आकर वो कहते हैं बहुत अच्छा किया, तुम अलग ही रहना। तो क्या हम गुरु को सही में प्रसन्न करने के लिए कुछ कर रहे हैं? आंसू आने का ये लाभ होना चाहिए, ठीक है। और जयती राधा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इस चैप्टर में जो महिमा बताई गई है भगवान के लिए कार्य करने की, तो उससे तो पता चलता है कि भगवान कितने कृपालु हैं कि हमें अवसर दे रहे हैं कि हम जल्दी से उनके पास जा सके। लेकिन हम वो क्रियाएं करते हैं तो पूर्ण श्रद्धा अभी हमारी नहीं है। जैसे नमस्कार करते हैं तो कृष्ण लोक को चले जाएंगे, पर हम नमस्कार करते हैं तो अभी वो श्रद्धा इतनी नहीं है, तो ये भी अपराध है कि अगर हम पूर्ण श्रद्धा से नहीं कर पाते।
हाँ, अगर हम ये अपराध तब होगा जब हम संघर्ष नहीं कर रहे हैं इस भाव से बाहर आने के लिए, जब हम ये पूछ प्रश्न नहीं कर रहे हैं कि कैसे हमारी वो श्रद्धा पूर्ण होगी, या उसके लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, तो अपराध है, मतलब हम भौतिकता में पड़े हुए। लेकिन अगर हमारी श्रद्धा पूर्ण नहीं है मगर संघर्ष है, हम प्रयास कर रहे हैं, हम जिज्ञासा कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं, तो ये कोई अपराध नहीं। जब तक हमारा संघर्ष चल रहा है भगवान किस चीज से प्रसन्न होंगे, खास करके हमारे जैसे कलयुग के लोगों की बात की जाए, तो भगवान किससे प्रसन्न होंगे? फल से नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कलयुग के लोग फल दे ही नहीं सकते, इसीलिए केवल प्रयास से प्रसन्न हो जाते हैं भगवान। जैसे हम नित्यानंद प्रभु के विषय में जब कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, आपने एग्जाम में थोड़ा भी लिख दिया वो पूरे मार्क्स दे दो। नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, आप आ गए बस, या तो सोच लिए आपने एग्जाम देना है, बस उन्होंने कहा बहुत है, चलो चलो मेरे साथ, हाथ पकड़ के लाइए। तो इसीलिए हमें संघर्ष करना, भगवान की संघर्ष से प्रसन्न, बस उसको करते रहिए और श्रद्धा धीरे धीरे आएगी, ठीक है। ओके, श्रीकांत शर्मा जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी,
हरे कृष्णा ब्रो जी, धन्यवाद।
हरे कृष्णा
ब्रो जी, माय फ्रेंड गोकुल एंड चेतनदा सत्यदेव, बाय मिस्टेक रे जैन हो गया था ब्रो जी, मेरा आंसर मिल गया मुझे।
अच्छा, बाय मिस्टेक, ठीक ठीक है, हरे। ओके, सो आपकी अनुमति हो तो थोड़ा आगे बढ़े, या आप लोग थक गए? ठीक है, सो संकीर्त, और तो किसी का हाथ नहीं दिख रहा है ना, नहीं, ठीक है। सो संकीर्तन की चर्चा है, संकीर्तन तो आप लोग बड़े अच्छे से करते हैं, जप की चर्चा हम लोग अभी कर चुके हैं कि जो व्यक्ति धीमे स्वर में या उच्च स्वर में पवित्र नाम का उच्चारण करता है उसके लिए मुक्ति तथा स्वार्गिक सुख के मार्ग तुरंत खुल जाते हैं। स्वर्ग जाने की कामना है तो अच्छे से जप कीजिए, ऐसे लिखा है इसमें, स्वर्ग के सुख के मार्ग खुल जाते हैं। और अगर भगवान का धाम जाने की इच्छा है, भगवान की प्रसन्नता की इच्छा है, तो बड़े ध्यान से जप कीजिए। ओके, निवेदन की हम लोग चर्चा कर चुके हैं, प्रसिद्ध प्रार्थनाएं हो चुकी हैं, प्रसाद ग्रहण करना, इसमें ना बहुत छोटा लिखा है, प्रसाद का तो बड़ा लंबा चौड़ा होना चाहिए था, लेकिन केवल एक ही पद्म पुराण से लिखा है कि जो व्यक्ति प्रसाद को आदर देता है नियमित रूप से अर्च विग्रह के सामने से कुछ दूर जाकर चरणामृत के साथ उसको खाता है उसे उन पुण्य कर्मों के फल प्राप्त होते हैं जो 10,000 यज्ञ करने से प्राप्त होते हैं। तो आप लोग रोज हजारों यज्ञ कर रहे हो भगवान का प्रसाद खा कर केवल। फिर प्रसाद के विषय में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व करकिल विषय भुंगते ते त्वगम पापा ये पचंती आत्म कारणात् यज्ञ अर्थात कर्मणो न्यत्र लोको यम कर्म बंधनः, बहुत सारे हम लोग चर्चा कर चुके। तो प्रसाद के विषय में किसी को कोई संशय, कोई पूछना चाहते हैं प्रसाद के विषय में तो एक आध प्रश्न, नहीं तो आगे बढ़ते हैं चरणामृत और अन्य चीजों पे। हमने सोचा था 13 अध्याय कंप्लीट कर देंगे, हम तो 10 तक नहीं पहुंचे। किसी को कोई प्रश्न है प्रसाद के विषय में? कविता माता जी, यस।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे प्रसाद, जैसे हम भगवान जी को भोग लगाते हैं और भोग लगाने के बाद वो जैसे प्रसाद है हम पूरे खाने में मिक्स कर देते हैं, उसे महाप्रसाद बना देते हैं। अब कई बार क्या होता है कि जैसे भोजन बहुत एक्स्ट्रा भी बन जाता है एंड वो जब प्रसाद उसमें मिक्स कर देते हैं महाप्रसाद हो जाता है, तो फिर और वो अगर खराब हो जाए या ये नहीं यूज आए तो फिर उसका मतलब उसका अपराध लगता है कि कैसे क्या है?
हाँ, इसलिए हमने एक बार ये कहा था कि महाप्रसाद जो डायरेक्ट भगवान को अर्पण करते हैं उसको मिक्स नहीं करना चाहिए अन्य प्रसाद में, क्योंकि जो भगवान की प्लेट से आता है उसको महाप्रसाद कहते हैं और अन्य जो रहता है जो जिस जो बना है वो प्रसाद होता है। तो महाप्रसाद को ज्यादातर अलग से बांट देना चाहिए, घर में जब सब खाने बैठे तो थोड़ा थोड़ा उसमें से निकाल के उसको समाप्त कर देना चाहिए, उसको मिक्स नहीं करना चाहिए। मिक्स करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन अगर आपको पता हो कि मिक्स करने से ये खत्म हो जाएगा पूरा तब ठीक है, नहीं तो फिर उसको अलग से बांट देना चाहिए। तो सेफ रास्ता ये है कि आप घर में जब बनाएं और जो भी भगवान को अर्पण करते हैं उनकी थाली का जो है उसको अलग से निकाल कर थाली धोने के बाद फिर वो प्रसाद जो है वो जो भी जब आप लोग सब खाने बैठे घर के तो उसमें थोड़ा थोड़ा बांट दीजिए, ठीक है? प्रयास कीजिए उसको फेंकना नहीं चाहिए। नटरानी राधिका या राधा माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम भोग लगाते हैं उसको भगवान जी को, तो हमारा टाइम एक ही नहीं हो पाता क्योंकि वो काम पर जाना होता है, तो सुबह ही हम बनाते हैं और उसी टाइम भोग लगा देते हैं, तो वो क्या अपराध रहेगा फिर? और बार बार भोग लगाते हैं, जैसे जो चीज बनाते हैं उसका भोग लगा दिया, तो भगवान को ऐसे नहीं करना चाहिए?
पहले भगवान जब आपके घर में आते हैं तो आपको एक सिद्धांत सिखाने के लिए आते हैं कि शरणागति कैसी होनी चाहिए। तो जैसे महाप्रभु आए दिखाने के लिए कि भक्त कैसा होना चाहिए तो भक्त रूप में आए, इसीलिए विग्रह भी आपके घर में आते हैं दिखाने के लिए कि शरणागति कैसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? जब आप खिला रहे हैं तब वो खाते हैं, जब आप उनको उठा दें वो उठ जाते हैं, जब आप सुला दें सो जाते हैं, जब आप आरती करें तो वो बेचारे स्वीकार करते हैं। तो सिखला रहे हैं कि कैसी शरणागति हमारी कृष्ण के प्रति होनी।
नहीं, जैसे हम 12 बजे तक तो खिला देते हैं लेकिन उसमें टाइम फिक्स नहीं है, कभी 10 बजे कभी 11 बजे ऐसे।
कोई चिंता नहीं है, लेकिन प्रयास कीजिए कि अगर हो सके सही समय पर, जैसे आपको भी आपके घर में जितने भी लोग हैं, मान लीजिए कि आपके घर में कोई आपसे कहते हैं कि हमें 10 बजे चाहिए 11 बजे चाहिए, आप प्रयास करते हो देने का समय पर, कभी कभी इधर उधर हो जाए ठीक है, लेकिन जनरली तो अच्छा होगा कि अगर एक समय फिक्स हो सके तो उससे भगवान का आदर बढ़ता है और हमारे लिए भी एक ये भावना बनी रहती है कि हम ये जो बना रहे हैं भगवान के लिए बना रहे हैं। एक तो हो सके तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अपराध नहीं।
क्योंकि और लोगों को प्रसाद देना होता है तो इस वजह से कई बार जल्दी लगाना पड़ जाता है।
हाँ जी, कोई अपराध नहीं है, कर सकते। निकुंज राधा माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, वो प्रसाद हम मिक्स करके फिर जो बच जाए वो गाय को खिला सकते हैं? हम उसको वेस्ट तो नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रसाद है, वो गाय को खिला सकते हैं?
निश्चित, हाँ निश्चित गाय को खिला सकते हैं। अगर कुछ बच गया है आपके, आप सबने खा लिया के बाद भी कुछ रोटियां बची हैं, वैसे करा सकते हैं। और उससे अच्छा ये होगा कि जब आप बनाएं तभी गाय के लिए पहले अलग कर दीजिए, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि गायों का महत्व होना चाहिए, केवल बचे ये तो अच्छा है, आपने जो प्रश्न किया वो सही है, लेकिन एक और भी कर लीजिए कि जब बनाएं तो एक दो रोटी पहले ही गाय के लिए अलग। अगर आप ऐसे शहर में हैं जहाँ गाय हैं, मुंबई जैसे शहर में है तो नहीं, जहाँ गाय ढूंढते ढूंढते परेशान होते हैं। आप इस समय कहाँ पर हो?
अभी मैं कच्छ में हूँ प्रभु जी, भुज में हूँ। यहाँ तो गायें बहुत ज्यादा है,
बहुत है ना।
हाँ।
पहले निकाल के रखा करिए।
हाँ, रोटी तो रोज निकालते ही है,
खुद ही गाय जैसी है, गाय के पास तो गाय है ही ना, माता जी गाय।
प्रभु जी पता नहीं है उनको कि मैं कैसी हूँ।
ओके, और किसी के बहुत सारे हाथ दिख रहे हैं मुझे, इसलिए प्रसाद का कौन सी चर्चा चल रही थी, गलत चर्चा। आगे हम लोग आगे जा रहे हैं दूसरे अध्याय पर, आप सबके हाथ जिनके भी उठे हैं सब कैंसिल, ठीक है। ले लेते हैं प्रकाशानंद प्रभु, यस प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम।
हरे कृष्णा
प्रभु जी। ऐसा है कि जैसे हम लोग चाहते हैं कि हमारा भगवान से कनेक्शन बने प्रभु जी, वो बने कनेक्शन बनता है जब बड़े दुखी होते हैं, बड़े परेशान होते हैं, तब भगवान को याद करते हैं ना, वरना भगवान की याद तो आती नहीं है। और ये बात है कि जैसे हम ये चीज से डरते हैं कि भगवान हमको दुख दे, क्यों दुख देते हैं हम सह नहीं कर पाते, हम चाहते सुख हैं और भगवान से संबंध भी चाहते हैं, तो ये बड़ा ऐसा कॉम्बिनेशन के साथ हो नहीं पाता। हम भगवान को बोलते भगवान को दुख तो मत दो, कि दुख दोगे तो हम जी नहीं पाएंगे, जब दुख आता है तो भगवान की याद आती है। तो ये दुविधा है कि भगवान से मांगे क्या, दुख मांगे तो परेशानियां आती हैं, उसमें भगवान याद आते हैं, और हम भगवान से मांगते क्या, हम सुख मांगते हैं, तो ये दुविधा, इसमें इतना कंफ्यूजन है, कभी मैं खुद ही कंफ्यूजन, करना क्या चाहिए?
बहुत सरल चीज है इसको करने के लिए, हमें ये पहले समझना चाहिए कि जो सुख हम भगवान से मांग रहे हैं वो सुख है या केवल दुख है, भगवान क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कभी कभी या अधिकतर हम लोग जिसको मांग रहे हैं तो उद्देश्य भगवान क्या चाहते हैं हमारे से, भगवान चाहते हैं हम इतना ऊंचा सुख का आनंद लें कि ये जो सुख और दुख इस जगत का है जिसको हम सुख मानते हैं वो भी दुख के लिए ही है। तो हमें पहले ये तो समझ लेना है कि जैसे आपका प्रश्न है कि भगवान से क्या मांगे या कैसे करें, तो सच्चा सुख क्या है, क्या इस जगत का सुख जिसकी हम कामना भगवान से कर रहे हैं वो सुख है या केवल हमें कुछ कष्ट देने का एक और दूसरा मार्ग है। जब इस बात को व्यक्ति समझ जाता है तो वो भगवान से सच्चे सुख की कामना करता है, और हमें करनी चाहिए, अधिकार है हमारा भगवान से सुख मांगने का, लेकिन कौन सा सुख, वो सुख जो कभी समाप्त नहीं होने वाला, वो सुख जो हमसे छीना नहीं जा सकता लेकिन इस समय हमें दिख नहीं रहा है कि कहाँ है। तो इसलिए उद्देश्य ये होना चाहिए हमारा सबसे पहले कि हम जाने कि हम सुख के लिए बने हैं, और उस सुख की कामना करना या उस सुख की प्राप्ति करना हमारा अधिकार है, तो इसलिए उस सुख को मांगे, अपने आप ये जो चीजें हैं कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। लेकिन हमारी तकलीफ ये है कि हमने जाना नहीं कि सुख क्या है और हम केवल उनको मांग रहे हैं चीजों को, इसीलिए दुख भी आता है सुख भी आता है और हम लोग इधर उधर हंसे रहते हैं। प्रयास ये कीजिए कि सच्चे सुख की कामना कीजिए, भगवान से कहिए कि मुझे वो सुख दीजिए जिसका मुझे अधिकार है, वो सुख दीजिए जो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, कहना चाहिए। जब जब जन्म हुआ, मतलब जब भगवान ने हमें प्रकट किया, तब से जो अधिकार है उस सुख के लिए हमें कामना करनी चाहिए, ठीक है प्रभु। बहुत सारे हाथ हैं, गरिमा पूरा नाम है, गरिमा माता जी, आवाज नहीं आ रही, ठीक है। हाँ माता जी बोलिए। माता जी क्षमा चाहेंगे, किसी को सुनाई दे रहा हो तो हमें बता दीजिए क्या बोल रहे हैं, शायद हमारा माइक यहाँ खराब हो गया।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, आप सुनाएंगे?
हाँ जी बिल्कुल सर।
जैसा कि आपने बताया कि लंच एंड डिनर का टाइम फिक्स होना चाहिए, तो लंच एंड डिनर का टाइम फिक्स है, बट इन बिटवीन पूरे दिन में कुछ भी कोई किसी भी तरह का नाश्ता बनता है, जैसे मेरा बच्चे ने कुछ डिमांड की, कोई गेस्ट आ गए, तो मुझे ऐसा है कि प्रसाद ही जाना चाहिए, तब कुछ भी बनता है दिन में भगवान को ऑफर करते हो, तो इज इट ओके कि किसी भी टाइम पे कुछ भी हम ऑफर कर रहे हैं?
परफेक्ट, ऐसा होना चाहिए कि कुछ चीजें फिक्स हों, जैसे भगवान को दोपहर का खाना या दोपहर का भोग या जो भी आप लगा रहे हैं वो एक कुछ फिक्स हो। इसके अलावा कभी भी आप बनाते हैं, क्योंकि ये नियम जरूरी है कि जो भी खाएं वो भगवान को अर्पण करके खाएं, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उनको लगा सकते हैं।
धन्यवाद।
गुण आश्रित हैं भगवान आपके घर में, चिंता मत कीजिए, जैसे उनको आप सेवा करनी है वैसे कीजिए, बस सेवा करते रहे। चरण रेणु माता जी, आई थिंक यस। माता जी बोलिए, चरण रेणु माता जी।
हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दो प्रश्न
है, सुनाई दे रहा है।
जैसे कि किसी उन्होंने पूछा था, नया कोई है भक्त, भक्त मतलब अभी आ रहे हैं, तो उन्होंने पूछा था कि हम भगवान को भोग लगाते हैं तो हमको गाय के लिए रोटी निकालने की क्या जरूरत है, या हम पहली रोटी गाय की निकालें कि नहीं निकालें, एक तो ये प्रश्न था, क्योंकि वो लोग गाय को रोटी खिलाते हैं और अभी उनको किसी से मालूम पड़ा कि पहले भगवान को खिलाना चाहिए फिर गाय को खिलाओ, तो उनका कैसे, उनको
प्रश्न क्या चाहिए? है उनका प्रश्न क्या है उनका?
उनका प्रश्न ये है कि गाय की रोटी हम पहले, सबसे फर्स्ट रोटी जो हम बनाते थे, स्टार्ट करते थे बनाना, तो पहली रोटी हम गाय के लिए निकालते थे, गाय और कुत्तों के लिए, तो और उसके बाद फिर हम बाकी खाना, बाकी चपाती बनाते हैं, तो उनको क्या बताना चाहिए?
उनको ये बताना चाहिए कि उनको ये बताना चाहिए कि जो गाय हैं वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त तो होती हैं, भगवान के बहुत निकट मानी गई हैं, भगवान को बहुत प्रिय हैं, और इसीलिए वैसे आप उनको रोटी देते हो तो निश्चित लाभ लगता है, मिलता है, लेकिन अगर आप उनको भगवान को अर्पित की हुई रोटी देते हो तो उसका, उससे वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं और आपको बहुत सारा आशीर्वाद देती हैं, तो इसीलिए भगवान को अर्पित करके फिर पहली रोटी उनको दे दें गायों को, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ठीक है, और एक और प्रश्न है प्रभु जी, जैसे कि बाजार में सब्जी आती है एक तुरई,
हाँ जी,
आप जानते हैं कि नहीं, वो कड़वी निकलती है अक्सर,
आपने खिलाई नहीं कभी तो कैसे पता
प्रभु जी आइए जरूर, इस बार जरूर आपको इनवाइट करें, और दूसरों का नंबर इतना रहता है कि मैं इनवाइट ही नहीं कर पाती हूँ आपको कभी भी, तो
ऐसे कुछ नहीं है, वो हम तो वेट कर रहे थे कि आप करें इनवाइट, लेकिन आपने किया नहीं।
मोस्ट वेलकम प्रभु जी, ऑलवेज।
हमने सोचा कि थोड़ी साधना और बढ़ा ले, हम क्वालिफाइड हो जाए।
अरे प्रभु जी
यस बताइए माता जी, दूसरा कहाँ गई आपके प्रश्न?
एक आता है छोटे कांचरे आते हैं, ये राजस्थान में ज्यादा मिलते हैं, तो वो अक्सर कड़वे निकल जाते हैं, तो उनको अगर हम टेस्ट नहीं करें तो कड़वा निकल गया तो पूरी सब्जी खराब हो जाती है, और अगर हम टेस्ट कर लेते फिर उसको भोग लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए?
टेस्ट करने के बाद तो भोग लगता ही नहीं है।
क्लैरिफाई कर देते हैं प्रभु जी, इनके प्रश्न में ये प्रश्न है कि जब सब्जी काटी जा रही है, ये पकाई नहीं गई है उस समय, इसलिए ये उसका छोटा टुकड़ा टेस्ट कर लेते हैं कि अगर वो कड़वी होगी तो सारी सब्जी खराब हो जाएगी, अगर कड़वी होती है तो उसको उसमें यूज नहीं करते हैं, सही होती है तो उसको काटते हैं ये लोग उसके अंदर, ये प्रश्न है।
हाँ यही है प्रश्न।
अच्छा, सो ऐसा है कि समझिए वो ऐसी सब्जी होती है, अगर अलग अलग पीसेस, एक दो जो आप दूसरी बात करें वो छोटे छोटे पीस होते हैं शायद ना?
हाँ हाँ, छोटे छोटे पीस भी होते हैं और हाँ, बड़ी पीस भी होती
है, तो जो छोटे छोटे पीस हैं अलग अलग हैं, उसमें अगर आप एक पीस का बनाने के पहले उसको टेस्ट कर रहे हैं और वो कड़वा है या ठीक है कि नहीं जो भी है, फिर उस पीस को फेंक कर बाकी की सब्जी बनाई जा सकती है।
अच्छा ठीक, मतलब ऑफर हो सकती है सब्जी।
हाँ, क्योंकि वैसे भी जब आप मार्केट से लाते हैं तो कोई तो बहुत सारे वो ऑलरेडी पहले ले जा चुके हैं, उन्होंने क्या किया है वो नहीं पता है ना, तो उसको कर सकते हैं।
प्रभु जी शबरी का भाव है, शबरी का भाव समझ चलिए।
हाँ, वो शबरी के लिए रहने देना चाहिए।
ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच, हरे कृष्ण।
वैसे आपको ये बताएं कि ये शबरी का वर्णन भी रामायण में नहीं है कि उसने झूठे बेर खिलाए थे भगवान को, ये सब खैर अभी उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, सो और किसी का प्रश्न दिखाई, बहुत सारे हाथ हो गए, कहां हम लोग आगे बढ़ेंगे कि नहीं। तो जी 9:30 होने वाले, 7 मिनट बाकी है। ठीक है, जिनके प्रश्न है, ये कौन है, आकर्षणी राधा माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा
प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे प्रसाद का भोग लगाते हैं, वो महाप्रसाद अगर भोग में मिला देते हैं तो कोई वेस्ट ना हो, पर मेरा तो टिफिन सर्विस का काम है और मुझे गुरु महाराज से आदेश ये है कि मैं लोगों को वो प्रसाद खिलाऊं, तो फिर अब मैं कैसे करूं, इतने दिन तो मैं वो महाप्रसाद पूरे प्रसाद में मिला के ही टिफिन सर्विस करती हूं।
इसमें कोई तकलीफ नहीं है, गुरु का आदेश है प्रसाद खिलाइए, तो गुरु का आदेश ये नहीं है कि सबको महाप्रसाद खिलाइए, उनका आदेश है प्रसाद खिलाइए। तो आप जब बनाते हैं तो उसको आप जो भगवान को अर्पण करते हैं उसको आप लोग घर में इस्तेमाल कर लीजिए, घर में भी तो खाते होंगे कि आप लोग उपवास रखते हो।
नहीं, वो
घर में इस्तेमाल कर, हाँ तो घर में उसको इस्तेमाल कीजिए, और बाकी का प्रसाद है उसको आप लोगों को दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अच्छा, तो वो मिलाए बिना भी प्रसाद बन जाता है?
बिल्कुल, मिलाए बिना प्रसाद है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मिलाने के बाद ही प्रसाद बनता है, मिलाए बिना भी प्रसाद।
ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु।
दिव्या मात जी सीकर से, हाथ ऊपर था आपका। ओके, और कोई शायद उनका कुछ मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम। सारे आप लोगों ने सब, माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। दिव्या माता जी, माता जी आप बोल रहे हैं लेकिन आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट में कुछ करना होगा। नहीं, आवाज नहीं है, आप वो वहां पर कुछ बटन दबाना होगा शायद। हाँ, आप किसी को बुला लीजिए जिनको कुछ पता हो कैसे करना है, तब तक हम और के प्रश्न ले लेते हैं किसी। मुकुंद किशोर प्रभु, ओके, उनका भी कुछ तकलीफ है। अस्मित राधिका माता जी।
जी प्रभु जी, प्रभु जी जैसे चरण रेण माता जी ने पूछा, मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो उन्होंने जो पूछा ना, वो उसमें आपने बोला कि एक चख लीजिए और फिर बाकी की बना लीजिए, लेकिन उसमें ऐसा होता है कि प्रभु जी के एक मीठा निकला है या एक कड़वा निकला है तो वो बाकी सारे वैसे ही निकलेंगे, वो नहीं है, उसमें हर एक को चखना पड़ता है।
कोई बात नहीं, भगवान चख लेंगे, आप एक को चख लीजिए, अगर एक में कड़वा है तो सब फेंक दीजिए, अगर मीठा है तो बना दीजिए, और उसमें फिर कड़वा निकला तो फिर वो चेहरा देख लीजिएगा भगवान का खाते समय कैसा हो रहा।
एक प्रभु जी एक क्वेश्चन और है कि हम जो राजभोग लगता है जेएनआई में, वो हम घर से बना के लेके जाते हैं, तो मैंने आपकी जो क्लासेस सुनी थी पहले की, उसमें आपने बताया था कि एक बार दूध गर्म हो गया और आपने भोग लगाया तो वो बाकी का भी प्रसाद हो गया, अगर कच्चा है तो ही आप उसे वापस मतलब गर्म करके ऑफर कर सकते हो, दोबारा उसको ऑफर नहीं कर सकते। तो हम लोग जो राजभोग में सब्जी बना के ले जाते हैं तो कितने लोग ऐसे ही करते हैं कि इतनी बनाते हैं कि वो घर में भी हो जाए और घर घर पे भी भोग लग जाए और राजभोग में भी भोग लग जाए, तो बिना खाए, मतलब घर पे भी भोग लग जाए और राजभोग में भी चली जाए, तो ये सही है?
उसमें क्या तकलीफ है, राजभोग में भोग लग जाएगा उसके बाद तो खा ही सकते हैं ना।
हाँ, पर घर पे भी भोग लगाया है।
ओ, घर पे भोग लगा है।
हाँ,
अच्छा। तो हमने उसको बहुत स्पष्ट कहा था कि जब मंदिर के दीपी विग्रह जो होते हैं वो प्रमुख माने जाते हैं, तो अगर ऐसा कुछ करना है तो पहले मंदिर में भोग लगने देना चाहिए, और मंदिर में भोग लग गया उसी समय अगर चाहें तो वो वहां पर या उसके थोड़े समय बाद लगा सकते हैं घर में, अगर लगाना है तो। वैसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर उनको वही चीज लगानी है जो उन्होंने वहां लगाई है, तो प्रयास ये होना चाहिए कि पहले मंदिर में हो, बाद में फिर घर का हो। घर पर लगाकर फिर मंदिर पे लेके नहीं जाना चाहिए, तो वो उसमें कोई तकलीफ उसको कर सकते।
एक ही प्रसाद का दो या तीन जगह सेम टाइम पे भोग लग सकता है?
सेम टाइम पे, हाँ, अगर ये सब कृष्ण को हो रहा है।
हाँ,
तो क्या
मतलब जैसे हम कभी कभी किसी डीओटी को भी भेजते हैं कि आप भी अपने घर पे भोग लगाना, मैंने आज ये बनाया है, तो हम उसको अपने भगवान को भी ऑफर करते हैं और वो डीओटी को भी बोल के
बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि मंदिर में अर्पण हुए बिना पहले और कहीं अर्पण नहीं होना चाहिए। मंदिर में पहले हो, क्योंकि मंदिर के विग्रह प्रमुख माने जाते हैं, बाकी जो विग्रह उनके विस्तार माने जाते हैं। जैसे अब हमारा मंदिर बनेगा यहाँ वेसु में, तो जो मंदिर के विग्रह होंगे वो मूल विग्रह होते हैं, आपके घर के जितने भी लोगों के घरों में विग्रह हैं वो उनके विस्तार माने जाते हैं। तो इसीलिए पहला अर्पण मंदिर में होता है, फिर उसके बाद आप उसको घर में कर सकते हैं।
और प्रभु जी, दो डिवोटी के यहाँ पे भोग लगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना?
भगवान कितने भी रूप में विस्तार कर सकते हैं, चिंता नहीं। मुकुंद किशोर प्रभु, आपका आवाज आ रही है नहीं आ रही? कुछ नहीं आ रही है आपकी। तब तक जय द्वारका पति प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।
ऐसा लग रहा है कीर्तन हो रहा है।
हरे
प्रभु, आपका साउंड थोड़ा, इंटरनेट थोड़ा वीक है शायद मुकुंद किशोर
प्रभु। ठीक है प्रभु जी, आवाज मेरी?
हाँ, आपकी आवाज ठीक है, बोलिए।
अच्छा प्रभु जी, कल रात को मैं भगवान को दूध का भोग लगा था, और आजकल दूध जैसे नहीं पी रहे हैं, फास्ट है दूध का एक इस महीने में, तो कल वैसे तो जनरली घर पे हम उसका दही बना देते हैं, फिर उसको नेक्स्ट डे यूज कर लेते हैं, लेकिन कल दही बनाने की व्यवस्था भी नहीं थी, तो ऐसे में दूध का मतलब क्या करते हैं? बच्चों को उसने बोला दौड़कर ने कि बच्चों को दे देते हैं, मैंने कहा फास्ट चल रहा है तो भोग लग चुका है, अगर कुछ नहीं करेंगे तो दूध वेस्ट हो जाएगा और दूध पिएंगे तो फास्ट टूटेगा।
अच्छा, फास्ट क्यों चल रहा है अभी?
ये चतुर्मास का
प्रभु जी, ये चतुर्मास नहीं है, इस समय पुरुषोत्तम महीना चल रहा है और इस समय दूध ले सकते हैं। ये 17 तारीख के बाद से फिर से दूध बंद होगा। अच्छा। आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए, जब चतुर्मास के बीच में पुरुषोत्तम महीना आता है तो चतुर्मास के नियम रुक जाते हैं।
ओके।
ऐसा नहीं है कि 2 महीने तक दूध नहीं होगा, तो फिर क्या होता है कि अभी जैसे चतुर्मास शुरू हुआ तब से फिर दूध लेना शुरू कर सकते हैं। 17 तारीख को चतुर्मास खत्म होगा, 17-18 जो भी है, उसके बाद फिर से वो तीसरे महीने का नियम पालन शुरू हो जाता है 15 दिन के लिए।
ओके, ठीक है प्रभु जी।
तो इसलिए
अगर ये नहीं हो, ऐसी व्यवस्था ऐसा हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए?
well, दूध को अभी समझिए कि दूध को आप दही नहीं जमा पाए किसी कारण से, तो दूध तो था उस समय, कुछ उसका और बना सकते हैं आप, बनाकर कुछ बना दे सकते हैं। अगर दूध वैसे नहीं पीना, दूध का कोई आइटम, अगर आप दही नहीं जमा सके मतलब दही नहीं थी आपके पास जमाने के लिए, राइट? लेकिन आप उसका कोई आइटम बना दीजिए, थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा होगी अगर दूध नहीं लेना चाहते हैं, उसका थोड़ा सा रूप परिवर्तन करके ले लेना चाहिए, उसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए।
असल में वो लोगों को ये थोड़ा सा इसमें क्या होता है, अब थोड़ा जानकारी करके ही आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट की मनाही नहीं है, सिर्फ दूध एडिड पीने की मनाही है, ये बात ध्यान रखना द्वारकापति प्रभु।
यही हमने कहा कि रूप बदल दे, रूप बदल कर ले सकते हैं। ठीक है। और कौन
जरा खीर है, पनीर है, खोआ है, स्पंजे कुछ भी कर सकते हैं उसको।
या दूध का कोई भी आइटम मना नहीं है, केवल दूध। अब आपको बताएं, हमारे तो डिवोटी और दो चार हाथ आगे बढ़ जाते हैं, आप लोग तो फिर भी कुछ कम कह रहे हो पनीर वगैरह। हमारे डिवोटीज तो कहते हैं कि दूध में शक्कर डाल दी तो रूप बदल गया, पी सकते हैं। तो वो उतना भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ उसकी स्वीट राइस बनाए थोड़ी थिक वाली, दूध दूध ना हो उसमें, तो मेन है कि दूध नहीं। ओके, समय हो गया है और दो हाथ दिखाई दे रहे हैं। अनुमति है राधा चरण प्रभु कि बंद करें, समय तो हो गया।
प्रभु जी दो लोगों को नाराज करके सबको खुश किया है। तो
मुकुंद किशोर प्रभु, आवाज ही नहीं आ रही आपकी, हम तो तैयार हैं आपसे सुनने के लिए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
दंडवत, अभी आ गई आवाज। यस प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रश्न ऐसा था कि जैसे कि हम लोगों ने मिलना है और मैं एक जगह प्रीचिंग करता हूँ, वहां पे थोड़ा मेरे को ये फेस भी किया मैंने, वो लोग कहते हैं गौ सेवा ही प्रभु सेवा, तो हम इसको कैसे समझे, ये दशनाम अपराध में आता है प्रभु जी?
वेल, आप ये प्रश्न पूछ रहे कि उनको कैसे समझाएं या अपने लिए समझने के लिए?
प्रभु जी दोनों बातें हो जाती
हैं। तो दो अलग अलग चीजें हैं। तो उनको कैसे समझाएं कि गौ सेवा ही प्रभु सेवा है? उनको कहना चाहिए निश्चित ये सही है कि गौ सेवा ही प्रभु सेवा है, लेकिन गायों को प्रभु से जोड़े बिना गौ सेवा प्रभु सेवा कैसे होगी? तो इसलिए कृष्ण से जुड़कर गायें प्रसन्न होती हैं, ये तो सब जानते हैं, गोपाल हैं उनसे जुड़कर होती हैं। तो इसीलिए गायों की सेवा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गायों को आनंद कब आता है? जब वो सुबह सुबह खड़ी हो जाती थी नंद महाराज के घर के बाहर की, कब कृष्ण लेंगे, और तब वो जाती थी, नहीं तो हिलती नहीं थी ब्रज में। तो अभी भी उन्हें वही भाव है, लेकिन आप जबरदस्ती ले जाते हो, तो ले जाने से पहले कृष्ण के दर्शन करा दिया करो गायों को, तो वो प्रसन्न होकर जाएंगी और दूध भी ज्यादा देंगी, ऐसे कह सकते हैं उनको। और फिर अब जब कहा, जब वो जाते थे कृष्ण खाते थे बैठकर, उनको देखकर वो और ज्यादा घास खाती थी गायें। ये वर्णन है कि जब कृष्ण बैठे होते थे तो गायों का एक आंख घास पर होती थी और एक आंख कृष्ण पर। गायें ये कर सकती हैं, आप जानते हैं गायों में कैपेसिटी होती है कि वो एक ही समय में एक इधर और एक उधर देख सकते हैं। हम लोग प्रयास नहीं कर सकते क्योंकि हमारी आंखें सामने हैं, गायों की आंखें साइड में होती हैं, तो इसीलिए वो देख सकती हैं। तो उनको ऐसे समझाना चाहिए। और अपने लिए हमें ये समझना है कि अगर हम कहें कि गौ सेवा ही माधव सेवा है या भगवान की सेवा है, तो हमें जानना चाहिए कि भगवान से जोड़े बिना कोई भी सेवा भगवान की सेवा नहीं हो सकती। तो केवल गायों की सेवा करना, ये जान हम क्यों गायों की सेवा करते हैं? हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो कृष्ण को प्रिय हैं, इसलिए नहीं करते कि वो गाय हैं। तो कृष्ण से संबंध हुए बिना अगर हम कोई भी सेवा कर रहे हैं वो सेवा ठीक, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छी तरह से उनको संपर्क में ला के, जैसे हमारी जो गौशालाएं होती हैं, आप कहीं भी चले जाइए तो 24 घंटे प्रभुपाद कीर्तन चलता रहता है, गायों को वो सुनती रहती है। मंदिर है, भक्त आते हैं, कीर्तन होता है, और उडुपी मंदिर में, उडुपी के जो कृष्ण मठ मंदिर है मध्वाचार्य जी के द्वारा स्थापित, आज भी नियम है कि सुबह सुबह गाय और बछड़े को लाया जाता है। सबसे पहले जब कृष्ण दर्शन देते हैं, दर्शन आरती होती है वहाँ, तो पहले गाय और बछड़े आते सामने बांधा जाता है। तो भगवान से संबंध रखकर हम भी गायों की सेवा कर सकते हैं।
हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी।
हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आशा करते हैं कोई असंतुष्ट नहीं रहे हैं, किसी के हाथ नहीं दिख रहे हैं। सो किरण माता जी, आप असंतुष्ट लग रहे हैं, बताइए।
मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा प्रभु जी।
हाँ जी आ रही है माता जी।
हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कि मैं ज्वाइंट फैमिली से हूँ, तो मेरे यहाँ जैसे प्याज बनता है, प्याज की सब्जी एक बनती है, और मैं सिर्फ प्याज नहीं खाती हूँ, तो भगवान को भोग लगता है, तो जैसे कि प्याज की सब्जी के साथ अगर इन लोग का टिफिन डालते हैं, मैं अपने हस्बैंड का टिफिन डालती हूँ, तो वो बिना प्याज वाली सब्जी भी वो सर्व कर सकती हूँ उनको? एक प्याज की सब्जी हो गई, तो वो कोई दिक्कत नहीं है प्याज की सब्जी के साथ में भोग वाली सब्जी दूं? और
नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगाते समय तो भोग नहीं लगाते हैं ना उसका?
नहीं 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 प्रभु जी, प्याज का नहीं भोग लगाती हूँ, क्योंकि मैं
बिना प्याज कोई प्रॉब्लम नहीं, और देना देना भी चाहिए ताकि थोड़ा थोड़ा शुद्धिकरण होगा, कोई चिंता नहीं देना।
हाँ प्रभु ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी।
ओके कविता माता जी आखिरी प्रश्न आपका।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे इन्होंने प्याज की बात की, तो जैसे अब जैसे कुकिंग करते समय अगर पात्र सेम हो, वेसल सेम हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है या हमें डिफरेंट पात्र रखना चाहिए?
अलग अलग क्वेश्चन।
और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये,
अगर आप भगवान को एक मिनट, अगर आप भगवान को भोग लगा रहे हैं तो एक ही पात्र में जिसमें प्याज लहसुन बनता है उसी में लगाकर बनाकर भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए, अलग पात्र।
अगर वो क्लीन हो, हम उसे अच्छे से क्लीन कर ले, उसके बाद भी नहीं?
बिल्कुल नहीं।
अच्छा,
अगर इमरजेंसी है तो उसमें गोमूत्र गोबर डाल कर, एक सेकंड माता जी सुनिए, अगर इमरजेंसी है, कभी कभी होती है, तो भी इमरजेंसी में गोमूत्र गोबर डालकर उसको शुद्ध कर तब किया जा सकता है, लेकिन ऑन ए रेगुलर बेसिस आपको डेली में अलग अलग बर्तन ही रखने चाहिए। थोड़ी सी मेहनत होगी, डबल धोना पड़ेगा, लेकिन कर लीजिए, ठीक है?
ठीक है प्रभु जी। और जैसे प्रभु जी, जैसे ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, जैसे सॉल्ट है, मिर्ची वगैरह है, तो जैसे कई बार ऊपर से भी लेते हैं, तो वो जैसे फिर कच्चे मसाले भी हम ये सोचते हैं कि वो जूठा हो जाता है कि, या फिर मतलब अलग अलग रखना चाहिए? जैसे भोग बनाते तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को कैसे पवित्र माना जाता है कि कैसे?
नहीं पवित्र तो नहीं है, अलग अलग रखें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अगर प्याज काट रहे हैं, प्याज की सब्जी बना रहे हैं और उसी का हाथ आपने नमक में लगाया है और फिर वही नमक भगवान के लिए भोग में लगा रहे हैं, तो अच्छा नहीं, अलग रहना चाहिए।
नहीं प्याज की सब्जी ऐसे सर्व करते समय भी, जैसे किसी को खाने के समय नमक और एक्स्ट्रा चाहिए, तो हम अगर उसी कंटेनर में से दे देते हैं तो वो यूज कर सकते हैं
उसके लिए? उसके लिए तो माता जी सरल उपाय है कि टेबल पर आप वो दो ऐसे कुछ रख सकते हैं, वो अलग से आते हैं, उसमें से लोग लेते जाएं, डायरेक्ट कंटेनर में हाथ तो ने वैसे भी नहीं लगाना चाहिए, तो आप टेबल पर अलग से, आजकल वो आते हैं वो होटल्स आती हैं, वो रखने चाहिए।
और प्रभु जी घी का कैसे, जैसे घी जैसे हम लगाते हैं रोटियों में?
माता जी बहुत विस्तार में जा रहे हैं, सिम प्रिंसिपल हमने बता दिया कि आपको अलग रखना चाहिए, वो हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो घी का, नमक का, जीरे का, मसाले का बहुत ज्यादा हो जाएगा डिटेल, ठीक है? प्रिंसिपल समझ लीजिए, डिटेल आप थोड़ा अपने आप बात कर लीजिए, ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
प्रभु जी की जय।
पतिता नाम पावन
क्योंकि आज तो
Thank you.